आगे सबक देखिए भाई, सुम वुकूउल बाइनि बिमा सिवा सलासतिल उवलि मज़हबु ना वकाल शाफिई रहिमहुल्लाहु तआला यकउ बिहा रजईयुन लि अन्नल वाकिअ बिहा तलाकुन लि अन्नहा किनायातुन अनित तलाक वलिहादा तुश्तरतुन नियतु वयंतकिसु बिहल अदद वत्तलाकु मुअक्किबुन लिर्रजअति कस्सरीह। गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि गैर मदखूल बिहा औरत, यानी जिसकी अभी रुख्सती नहीं हुई, जिससे खावंद ने अभी सोहबत नहीं की, वो एक ही तलाक से बाइना हो जाती है और उस पर इद्दत भी नहीं है और वो फौरन ही आगे जहां चाहे निकाह कर सकती है। और दलील इसकी कि उस पर कोई इद्दत नहीं है वो अल्लाह ताला का ये कौल है, या अय्युहल्लदीन आमनु इदा नकहतुमुल मुमिनाती ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها। क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो, इदा नकह तुम उल मोमिनाती, जब तुम मोमिना औरतों से निकाह कर लो, सुम तल्लक तुमोहुन्न मिन कबली अंत मस्सूहुन्न, फिर इनको तुम तलाक दे दो सोहबत करने से पहले, फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतदूनहा, तो फिर इन पर तुम्हारी तरफ से कोई इद्दत नहीं है जिसे तुम शुमार करो। तो मालूम हुआ गैर मदखूल बिहा पर इद्दत नहीं है, और गैर मदखूल बिहा को अगर खावंद ने तीन तलाकें दी तो फिर अगर वो तीन तलाकें अलग अलग लफ्जों के साथ हैं, मसलन खावंद कहता है अंति तालिकुन तालिकुन तालिकुन, तो फिर इस सूरत में पहली तलाक से ही वो बाइना हो जाएगी और दूसरी और तीसरी तलाक लग्व चली जाएगी। और अगर खावन ने तीनों तलाकें एक ही लफ्ज से दी, यानी कहा अंति तालिकुन सलासन, तो फिर इस सूरत में तीनों तलाकें इकट्ठी उस पर वाके हो जाएंगी भाई। और अगर खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन वाहिदतन वाहिदतन, यानी हर्फ अतफ के साथ दो तलाकें अलग अलग दी, तो इस सूरत के अंदर भी पहली वाके हो जाएगी और दूसरी तलाक लगव हो जाएगी क्योंकि वो पहली से ही बाइना हो चुकी। और इसी तरह अगर खावन ने बीवी को दो तलाकें दी और उनके दरमियान कबलू या बादू का लफ्ज जिक्र किया, और फिर उसमें दो सूरतें हैं, या तो कबलू और बादू बगैर जमीर के इस्तेमाल होंगे या उनके साथ जमीर भी जुड़ी हुई होगी। मसलन खावन बीवी से कहता है अंति तालिकुं वाहिदतन कबला वाहिदतिन, या इस कबला के साथ जमीर भी जोड़ देता है अंति तालिकुं वाहिदतन कबलहा वाहिदतुन, या इसी तरह खावन अगर दो तलाकों के दरमियान बादू का लफ्ज ले आए बगैर जमीर के या जमीर के साथ, तो ये चार सूरतें बनती हैं भाई। और इन चार सूरतों के अंदर मैंने आपको बतलाया था कि अगर बाद वाली तलाक पहले है तो फिर दोनों इकट्ठी होंगी, क्योंकि पहली तलाक तो जमाना हाल में है और बाद वाली इससे भी पहले है, मालूम हुआ वो जमाना माजी में है, और जमाने माजी के अंदर तो खावन तलाक वाकई नहीं कर सकता, तो वो भी इस जमाने हाल में इसी तलाक के साथ वाकई होगी, तो दो तलाकें इकट्ठी हो जाएंगी। लिहाजा अगर वो तलाक जो बाद में जिक्र है अगर वो पहले वाकई कर रहा है खावन, तो फिर इस सूरत में दो तलाकें होंगी, और अगर वो तलाक जो बाद में जिक्र है वो पहले नहीं है तो फिर इस सूरत में एक ही तलाक वाकई होगी और उसी एक से औरत बाइना हो जाएगी और दूसरी तलाक लग्व चली जाएगी। और साहिब हिदाया ने आपको जाब्ता बतलाया था कि अगर जार्फ के साथ जमीर जुड़ी हुई हो तो फिर यह माबाद की सिफत होती है, अंति तालिकुं वाहिदतन कबलहा वाहिदतुन, तो ये कबलहा देखो कबल के साथ हा जमीर जुड़ी हुई है तो ये बाद वाली तलाक की सिफत है, मालूम हुआ कबलहा पहले होना ये बाद वाली तलाक की सिफत है, वो पहले है, कबल का लफ्ज जिक्र है ना, तो ये पहले होना बाद वाली तलाक की सिफत है, लिहाजा इस सूरत में दो तलाकें हो जाएंगी भाई। और अगर कबलू या बादू के साथ जमीर नहीं है तो फिर इस सूरत के अंदर ये कबलू और बादू पहली तलाक की सिफत होंगे भाई। तो लिहाजा खावंद अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुं वाहिदतन कबला वाहिदतिन, यहां कबल के साथ जमीर नहीं, लिहाजा ये पहले होना किसकी सिफत है, पहली तलाक की, लिहाजा इस सूरत में पहली तलाक होगी और दूसरी लग्व चली जाएगी क्योंकि वो औरत बाइना हो चुकी है पहली ही तलाक से। और अगर साथ जमीर जोड़ी अंति तालिकुन कबलहा वाहिदतुन, तो ये कबल के साथ हा जमीर जुड़ी हुई है, तो ये कबल होना पहले होना ये दूसरी तलाक की सिफत है, तो लिहाजा इस सूरत में दो तलाकें होंगी। और अगर बादू का लफ्ज आता है अंति तालिकुन वाहिदतन बादा वाहिदतिन, तो यहां जमीर साथ नहीं है, लिहाजा ये बाद में हो ना ये पहली तलाक की सिफत है, लिहाजा इसमें भी दो तलाकें हो जाएंगी। और अगर बादहा वाहिदतुन कहा तो इस सूरत में बादू के साथ हा जमीर जुड़ी हुई है, लिहाजा ये बाद वाली तलाक की सिफत है, मालूम हुआ वो बाद में है, तो पहली तलाक ही वाक हो जाएगी और दूसरी लग्व चली जाएगी। सूरत समझ में आ गई। और अगर खावन ने माँ या माहा जिक्र किया दोनों तलाकों के बीच में, फिर दोनों इकट्ठी वाक हो जाएंगी, क्योंकि माह जो है वो साथ मिलाने के लिए आता है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह मसला जिक्र फरमाया कि अगर खावन ने बीवी को हर्फ अतफ के साथ दो तलाकें दी और शर्त भी साथ जिक्र कर दी, तो अगर शर्त शुरू में जिक्र की है, मसलन खावन ने कहा इन दखलती दार अफ अंति तालिकुं वाहिदतं व वाहिदतन, तो इस सूरत में इमाम साहिब के नजदीक एक तलाक वाकई होगी, क्योंकि जो दूसरी तलाक है यह पहली तलाक के वास्ते से शर्त के साथ जुड़ रही है, लिहाजा यह मुअख्खर होगी और पहली तलाक पहले होगी और उसी से वह औरत बाइना हो जाएगी, तो दूसरी तलाक लगव हो जाएगी। लेकिन अगर शर्त को मुअख्खर कर दिया कि अंति तालिकुं वाहिदतं व वाहिदतन इन दखलती दारा, तो यह जो आखिर में शर्त आई इसने माकबल सारे कलाम को बदल दिया और दोनों तलाकें शर्त के साथ मुअल्लक हो गई, पहली भी मुअल्लक हुई दूसरी भी मुअल्लक हो गई, तो लिहाजा यानी पहली भी बराह रास्त मुअल्लक हुई और दूसरी भी बराह रास्त शर्त के साथ मुअल्लक हो गई, लिहाजा जैसे ही शर्त आएगी उसके साथ ही पहली और दूसरी दोनों तलाकें आ जाएंगी, क्योंकि दोनों शर्त के साथ मुअल्लक थी भाई, तो इस सूरत में दो तलाकें होंगी अगर शर्त को मुअख्खर किया भाई। जबकि साहिबैन फरमाते हैं शर्त को चाहे मुकदम करें चाहे मुअख्खर करें, दोनों सूरतों में दो दो तलाकें वाकई होंगी, क्योंकि दोनों तलाकें मुअल्लक हो चुकी हैं भाई। उसके बाद किनायात का जिक्र आया था भाई। किनायात, किनायात आपने पढ़ा, किनायात ये हैं कि गोलमोल अल्फाज के साथ तलाक दी जाए, यानी जिनमें तलाक का माना भी हो और दूसरा माना भी हो, तो किनायात में नीयत का होना जरूरी है, और तमाम किनायात से तलाके बाइन होती है सिवाय तीन किनायात के, और वो तीन किनायात कौन से हैं, इअतदी इस्तबरी रहिमा की और अंति वाहिदतुन। इअतदी तो इअतदी के अंदर देखो, या तो इसका माना यह है इअतदी तो इद्दत शुमार कर, या इसका माना है इअतदी तो शुमार कर, यानी अल्लाह के तेरे ऊपर कितने इनामात हैं कितनी नियामतें हैं, या तू मेरे एहसानात को शुमार कर, तो देखो गैर तलाक का माना भी है। तो अगर खावंद इसमें तलाक की नीयत करता है कि तू इद्दत शुमार कर, तो मालूम हुआ इससे पहले इक्तिजाअन तलाक को मानना पड़ेगा, क्योंकि बगैर तलाक के तो औरत पर इद्दत नहीं आती। इसी तरह इस्तबरी रहिम की, इसका भी वही माना है, अपने रहम को साफ कर ले यानी इद्दत गुजार ले, क्योंकि इद्दत भी औरत किस लिए गुजारती है, अपने रहम को साफ करने के लिए, तो जो इद्दत के जरिए मकसूद है उसको ही सराहतन लफ्जों में खावन ने जिक्र कर दिया, इस्तबरी रहिम की, तो अपने रहम को साफ कर ले। तो अगर इसमें वह तलाक की नीयत करता है कि तू इद्दत गुजार, तो इससे पहले इक्तिजाअन अंति तालिकुन को मानना पड़ेगा, क्योंकि बगैर तलाक के तो औरत पर इद्दत नहीं आती भाई। और तीसरा लफ्ज जो था वो अंति वाहिदतुन, अंति वाहिदतुन, यहां पर ये जो वाहिदतुन है इसको सिफत बनाएंगे तलाक महजूफ की, तो गोया असले कलाम यूं है अंति तालिकुन ततलीकतं वाहिदतन, अंति तालिकुन ततलीकतन वाहिदतन, लिहाजा इस सूरत में यहां पर वाहिदतन का मौसूफ ततलीकतन महजूफ है मुकद्दर है। तो ये जो तीन किनायात हैं इनके जरिए तलाक रजई होती है, और इनमें दो के अंदर अंति तालिकुन साबित होगा इक्तिजाअन, और आखिरी जो है उसके अंदर मस्दर मुकद्दर है भाई। बात समझ में आ गई। तो बहरहाल इन सबसे तलाक रजई होगी भाई। जबकि बाकी की नायात कहते हैं उसके अंदर अगर खामन ने तलाक की नीयत की तो एक तलाक बाइन हो जाएगी और अगर तीन की नीयत की तो तीन तलाकें भी हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि मसलन अंति बाइनून कहता है कि तू जुदा है और ये बैनूनत के तो दो किस्म पर है, एक बैनूनत खफीफा है एक बैनूनत गलीजा है, एक हल्की जुदाई है एक सख्त जुदाई है, हल्की जुदाई एक या दो तलाकों में आएगी और सख्त जुदाई जो है वो तीन तलाकों के अंदर आती है। तो लिहाजा खावंद यहां हल्की जुदाई यानी एक तलाक बाइन की नीयत भी कर सकता है और तीन तलाकों की भी नीयत कर सकता है, अलबत्ता दो की नीयत सही नहीं क्योंकि दो अदद है भाई। फिर साहिब हिदाया ने आपको तफसील बतलाई थी कि किनाये का लफ्ज बोलते हुए खावंद की तीन तरह की हालत हो सकती है, या तो आम हालत होगी या मुजाकरा तलाक चल रहा होगा या गजब की हालत होगी, खावंद गुस्से में है भाई। तो अगर आम हालत है तो फिर इस सूरत में तो सारा दारोमदार खावंद की नीयत पर है, यानी काजी के पास मसाला जाएगा तो काजी भी खावंद से उसकी नीयत पूछेगा, अगर खावंद कह दे मेरी नीयत नहीं थी तो काजी भी यही फैसला करेगा। लेकिन अगर मुजाकरा तलाक चल रहा था और खावंद ने किनाया लफ्ज इस्तेमाल किया और उस किनाये में जवाब बनने की सलाहियत तो है, रद्द बनने की सलाहियत नहीं है। जवाब का क्या मतलब, यानी खावंद उसको वाकई तलाक दे रहा है, उसका मुतालबा जो तलाक का है उसको कबूल कर रहा है। तो अगर खावंद ने ऐसा किनाया बोला जिसमें जवाब बनने की सलाहियत तो है लेकिन रद्द करने की सलाहियत नहीं है तो फिर काजी जुदाई का फैसला कर देगा और खावंद की तस्दीक नहीं की जाएगी, वो कहता रहे मेरी नीयत नहीं थी लेकिन भाई ये जो आपने लफ्ज बोला है इसमें रद्द करने और वापस करने का तो इहतमाल ही नहीं है, औरत तलाक का मुतालबा कर रही है, आपने जो लफ्ज बोला है उसमें तो औरत के मुतालबे को रद्द करने का माना नहीं बनता, लिहाजा इस सूरत में काजी उसकी बात की तस्दीक नहीं करेगा। लेकिन अगर खावंद ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है मुजाकरा तलाक में जो जवाब देने की भी सलाहियत रखता है, यानी तलाक देने की भी सलाहियत रखता है और रद्द की भी सलाहियत रखता है, तो फिर इस सूरत में काजी उसकी तस्दीक करेगा भाई, कसम के साथ भाई। और अगर खावंद गजब की हालत में था तो फिर इस सूरत के अंदर अगर खावंद ने ऐसा किनाया इस्तेमाल किया है जो रद्द या गाली का इस्तेमाल रखता है, गाली यानी डांट डपट या बुरा भला कहना, तो अगर वो रद्द करने का या डांट डपट का और गाली देने का इस्तेमाल रखता है तो इस सूरत में भी काजी खावंद की तस्दीक करेगा, और अगर वो गाली देने या रद्द करने की सलाहियत नहीं रखता तो फिर काजी खावंद की तस्दीक नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। सुम वुकू उल बाइनी बिमासी वसलासतिल उवली मजहबुना वकाल शाफिय्यु रहिमहुल्लाहु तआला यकउ बिहा रजईयुन। भाई अहनाफ का मजहब तो साहिब हिदाया ने बयान कर दिया कि हमारे नजदीक तीन किनायात जो हैं उनसे तलाक रजई होती है और बाकी जितने मशहूर किनायात हैं उनसे तलाक बाइन होती है, जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किनायात से हमेशा तलाक रजई होती है, किनायात से हमेशा तलाक रजई होती है। देखिए भाई कहते हैं सुम वुकूउल बाइनी बिमा सिवा सलासतिल उवली, उवल जमा है उला की, उवल जमा है उला की भाई। कहते हैं सुम वुकूउल बाइनी बिमा सिवा सलासतिल उवली, फिर तलाक बाइन का वाके होना पहले तीन किनायों के अलावा से, पहले तीन किनायों के अलावा बाकी किनायात से तलाक बाइन का वाके होना मजहबुना, यह हमारा मजहब है। वकाल शाफिय्यु रहमहुल्लाहु यकउ बिहा रजईयुन, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन किनायात के जरिए तलाक रजई वाके होती है। लिअन अलवाकिया बिहा तलाकुन, कहते हैं इसलिए क्योंकि इनके जरिए तलाक वाके होती है, इन किनायात के जरिए तलाक वाके होती है। भाई क्यों तलाक क्यों वाके होती है, कहते हैं लिअन्नहा किनायातुन अनि तलाकी, क्योंकि ये तलाक से किनाया है। ये क्या है, तलाक से किनाया है। बाज औकात खावन साफ लफ्जों में तलाक बोलता है, बाज औकात किनाये के अंदाज में ही तलाक बोलता है, यानी तलाक से किनाया होने का मतलब यह है कि खावंद का इरादा तलाक ही का होता है इनके जरिए। जैसे देखो मैं और आप जैद के बारे में बातें कर रहे हैं, अचानक एक तीसरा आदमी आ गया, लेकिन अब मैं उसको नहीं बताना चाहता कि मैं जैद के बारे में बात कर रहा था, तो अब मैं जैद का लफ्ज जिक्र नहीं करूंगा बल्कि फुलां का लफ्ज बोलूंगा। और यह फुलां की नाया है किससे? जैद से, कि फुलां मेरे पास आया था और फिर फुलां ने यह बात की और मैंने यह बात की। तो देखा, यह फुलां के जरिए मैं जैद से किनाया कर रहा हूं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो अंतिबाइनुन और अंतिबततुन या बतलतुन वगैरह जो किनायात हैं, ये भी तलाक से किनाया है, इनके जरिए तलाक का इरादा है भाई। ये किनाया है किससे? तलाक ही से किनाया है भाई। तो कहते हैं ली अन्नहा किनायातुन अनि तलाक, इसलिए क्योंकि ये तलाक से किनाया है, यानी इनके जरिए तलाक का इरादा है, यानी इनसे मुराद तलाक ही है। खावन ने कहा अंतिबाइनुन है लेकिन मुराद अंतितालिकुन है। ये इसी तरह है, मैंने कहा तो फुलानुन है लेकिन मुराद जैद है भाई, तवज्जो है। तो यहां भी तलाक से किनाया होने का क्या माना कि तलाक ही मुराद है इनसे। तो कहते हैं ली अन्नहा किनायात उनानी तलाक, इसलिए क्योंकि ये तलाक से किनायात हैं, यानी इनसे तलाक ही मुराद होती है भाई। कैसे? दलील आगे दे रहे हैं, कहते हैं वली हादा तुश्तरतु नियतु, और इसीलिए तो तलाक की नियत इनमें शर्त है भाई। बात गुजर चुकी है, एक सरीह होता है एक किनाया, सरीह के अंदर किसी नियत की जरूरत नहीं। खावंद अपनी बीवी से अंति तालिकुन कहे तो उसे नियत नहीं पूछी जाएगी, तलाक वाकई हो गई, क्योंकि सरीह के अंदर नियत की हाजत नहीं। लेकिन किनाये के अंदर और मानी का भी इहतमाल होता है, इसलिए आप पढ़ चुके हैं किनाये में नियत का होना जरूरी है। किसका होना? नियत का होना जरूरी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि ए अहनाफ, आपके नजदीक भी किनाये में तलाक की नियत शर्त है। मालूम हुआ ये तलाक ही से किनाया है, तलाक ही का इरादा है, इसीलिए तो तलाक की नियत भी शर्त है इसके अंदर भाई। और नीज इसकी वजह से तलाक के अदद भी कम हो जाते हैं। मसलन खावंद ने अगर किनाया इस्तेमाल किया तो जुदाई आ जाएगी, और खावंद अगर बाद में दोबारा इस औरत से निकाह करता है तो अब एक तलाक गुजर चुकी है, अब वो तमाम उम्र सिर्फ दो तलाकों का मालिक होगा। और अगर उसने दोबारा किनाया इस्तेमाल किया तो फिर एक और तलाक हो गई, वो फिर अगर दोबारा इसी औरत से निकाह करेगा तो अब तमाम जिंदगी सिर्फ एक तलाक का मालिक होगा। मालूम हुआ किनाये के साथ तलाक का अदद भी कम होता है, और नीज किनाये के अंदर तलाक की नीयत भी शर्त है। तो मालूम है ये तलाक ही से किनाया है। अंति बाइनुन, बाइनुन बोल रहा है लेकिन मुराद क्या है? तालिकुन ही है, तलाक ही मुराद है। तो देखिए कहते हैं ली अन्नहा किनायातुन अनित तलाकी, इसलिए क्योंकि ये तलाक से किनाए हैं, तलाक से किनाए हैं। इसकी दो दलीलें जिक्र कर रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरफ से साहिबे हिदाया, कि ये तलाक से किनाया है। क्यों? किस तरह भाई? कहते हैं वली हाजा तुश्तरतु नियतु, कहते हैं इसी वजह से इसके अंदर नियत की शर्त है कि तलाक की नियत की जाए। और नीज वयंतकिसु बिहल अददु, और नीज इनकी वजह से तलाक का अदद कम हो जाता है, तलाक की तादाद कम होती चली जाएगी इनकी वजह से। तो मालूम हुआ ये तलाक से किनाया है भाई। वह तलाक मुआक्किबुल लिर्रजअती, और तलाक तो अपने पीछे रुजू को लाती है, तलाक के बाद तो खावंद रुजू कर सकता है। का सरीह, जैसे सरीह तलाक के अंदर जो है उसके बाद रुजू का हक होता है खावंद को, तो यहां पर भी ये जो किनायात हैं ये तलाक से किनाया है। जब ये तलाक से किनाया है तो ये तलाक जैसा अमल करेंगे, और तलाक के बाद तो रुजू का हक होता है, लिहाजा यहां भी खावन को रुजू का हक होगा। मालूम हुआ किनायात से भी रजई तलाक होगी, किनायात से भी रजई तलाक होगी। तो कहते हैं वह तलाक मुआक्किबुल लिर्रजअती का सरीह, और तलाक जो है वह अपने पीछे रुजू को लाती है, जैसे कि सरीह तलाक है। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्न तसर्रुफल इबानति सदर मिन अहलिही मुजाफन इला महल्लिही अन विलायतिन शरईयतिन। हम कहते हैं कि खावन किनाया इस्तेमाल करता है तो इससे तलाक बाइन होगी, यानी इससे इबानत वाला फेल पाया जाएगा, जुदा कर देने वाला। खावन क्या कर रहा है? बीवी को अपने से जुदा कर रहा है। तो ये जो जुदा करने वाला तसर्रुफ है ये खावंद ने किया है, और खावंद जुदा करने के तसर्रुफ का मालिक है। खावंद बीवी को क्या कर सकता है अपने से जुदा कर सकता है, तो खावंद में इस इबानत के तसर्रुफ की अहलियत है और बीवी इस तसर्रुफ का महल है, यानी उसको खावंद जुदा कर सकता है, मालूम हुआ वो इबानत का महल है। खावंद में इबानत की अहलियत है और बीवी इबानत का महल है, और नीस खावंद को ये शरीयत ने इस तसर्रुफ का हक दिया है, वो इबानत कर सकता है, बीवी को अपने से जुदा कर सकता है। तो ये खावंद में इबानत की अहलियत मौजूद है और ये इबानत उसने कहां पर वाके की है, बीवी पर, और बीवी इबानत का महल भी है, और नीस खावंद को ये इबानत के तसर्रुफ किसने दिया, ये हक किसने दिया, शरीयत ने दिया। तो जब शरीयत ने एक हक खावंद को दिया है और खावंद जो अहल है, आकिल बालिग है, वो इस हक को इस्तेमाल कर रहा है और अपने महल में यानी अपनी बीवी पर इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी वजह से जुदाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जुदाई आ जाएगी। बात समझ में आ गई। खावन में है अहलियत, बीवी में है महलियत, और नीस या विलायत किसने दी है, शरीयत ने दी है। तो इन तीनों को मिलाने से मालूम हो गया कि खावन इबानत का तसर्रुफ कर सकता है। तो कहते हैं वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्न तसर्रुफल इबानत सदारा मिन अहली ही, कि ये इबानत यानी जुदा कर देने वाला तसर्रुफ सदारा ये पेश आया है, मिन अहली ही ऐ मिन अहली तसर्रुफी, उस शख्स से जो तसर्रुफ का अहल भी है, यानी जो खावंद है उसने ये इबानत वाला तसर्रुफ किया है, मुजाफन इला महल्ली ही, और खावंद ने इस इबानत की निस्बत की है, इला महल्ली ही, इस तसर्रुफ इबानत के महल की तरफ निस्बत की है, और ये इबानत जो है अन विलायतिन शरईयतिन, और ये तसर्रुफ साबित है खावंद के लिए अन विलायतिन शरईयतिन, शरई विलायत से, कि ये विलायत उसको किसने दी है, शरीयत ने दी है। बात समझ में आ रही है? बस साहिब हिदाया के अल्फाज जरा जहन में रखें, वो आगे तफसील बयान करेंगे तो बात खूब वाजे हो जाएगी। तो यहां तक क्या बात हुई, फिर तर्जमा देख लीजिए। वलना, हमारी दलील यह है कि अन्न तसर्रुफ अल इबानत सदर मिन अहलिही, कि इबानत वाला तसर्रुफ सादिर हुआ है अहले तसर्रुफ से, जिसमें इबानत वाले तसर्रुफ की सलाहियत थी, मुजाफन इला महल्लिही, और इस हाल में कि इसकी निस्बत हो रही है महल्ले तसर्रुफ की तरफ जहां इबानत वाला तसर्रुफ हो सकता है भाई, अन विलायतिन शरईयतिन, और ये इबानत वाला तसर्रुफ जो है खावन के लिए साबित है किससे, विलायत शरईया से, यानी शरीयत की जानिब से। अब यहां तीन बातें आ गईं। एक तो यह कि खावन को इबानत के तसर्रुफ का हक है, दूसरा बीवी इबानत के तसर्रुफ का महल है, और चौथी चीज यह आई कि खावन जो है उसको यह हक शरीयत ने दिया है। तो तीन चीजें हैं। अब इन तीन के बारे में साहिब हिदाया आगे बतलाएंगे कि भाई खावन का इबानत का अहल होना, खावन का इबानत का अहल होना, यह बात तो वाजे है, खावन क्या कर सकता है, तलाक देकर बीवी को अपने से जुदा कर सकता है, और बीवी इबानत का महल है, उसको खावन तलाक दे देगा तो बीवी क्या होगी, खावन से जुदा हो जाएगी। तो खावन की अहलियत और बीवी की महलियत में तो कोई खिफा है ही नहीं, यह बात तो जाहिर है। हां, सिर्फ एक बात रह गई कि शरीयत की तरफ से खावन को यह इबानत का हक मिला है, यह इबानत का तसर्रुफ मिला है, यह आपने नई बात कर दी। यह कहां से साबित है भाई? हम दलील दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किनायों के जरिए तलाक रजई होगी, तलाक बाइन नहीं होगी। अब हमने साबित करना है कि इसके जरिए तलाक बाइन होगी, और हमने बताया कि खावन अहल है, वो इबानत वाला तसर्रुफ कर सकता है, और बीवी उसका महल है कि खावन उसकी तरफ इस इबानत की निस्बत करता है। इन दो चीजों में तो कोई खिफा नहीं है। अब सिर्फ हमने यह साबित करना है कि शरअन खावन के पास इबानत का हक है, शरअन खावंद के पास इबानत का हक है, वो हमने साबित करना है। तो वो बयान करेंगे साहिब हिदाया और बतलाएंगे कि वजह ये कि खावंद जो है वो इस इबानत के तसर्रुफ का मोहताज है। खावंद क्या है? खावंद इबानत के तसर्रुफ का मोहताज है कि वो बीवी को अपने से फौरन क्या कर सके, अलग कर सके, निकाह को तोड़ सके। खावंद इसका मोहताज है, उसको हाजत है, और जैसे हाजत की वजह से शरीयत और तसर्रुफात की इजाजत देती है, तो इसी तरह ये इबानत की भी खावंद को इजाजत होगी कि वो तलाक बाइन वाके कर सकता है। तवज्जो है। बात क्या हुई कि शरीयत की तरफ से खावन को इबानत का हक है, उसके लिए हम दलील जिक्र कर रहे हैं कि खावन इबानत का मोहताज है, और इंसान जिस चीज का मोहताज होता है शरीयत की तरफ से उसको उस तसरुफ का हक मिलता है, वरना तो इंसान हरज में पड़ जाएगा, मुश्किल और तकलीफ में पड़ जाएगा। एक चीज की उसको हाजत है और उसको उसकी विलायत हासिल नहीं है। तो जब इंसान को किसी चीज की हाजत होगी जिसके बगैर चारा नहीं है, गुजारा नहीं है, तो शरीयत उसको उस तसरुफ का हक दे देती है। तो यहां भी खावन क्या है? इबानत का मोहताज है, उसको इबानत की हाजत है, लिहाजा उसको इस इबानत का हक होगा, वो इबानत का तसरुफ कर सकता है। भाई किस तरह खावन मोहताज है, तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि भाई देखिए, बाज औकात खावन जो है अपनी बीवी से बड़ा तंग आ गया, कोई बीवी है बड़ी ही बद अखलाक है या बद जुबान है, अब खावन इससे छुटकारा पाना चाहता है, क्या करना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। तो एक सूरत यह है खावंद इसको तलाक रजाई दे दे, लेकिन अगर खावंद तलाक रजाई देगा तो इसमें तो फिर भी दोबारा रुजू का इहतमाल है, बीवी से तो जान पूरी तरह अभी भी नहीं छूटी, इद्दत के अंदर खावंद भी रुजू कर सकता है, और नीज अगर खावंद की रुजू की नीयत ना भी हो लेकिन बीवी ने आकर अचानक खावंद का बोसा ले लिया तो भी रुजू हो जाएगा। तो देखो बगैर खावन के इरादे के भी रुजू हो सकता है, मालूम हुआ तलाक रजाई दी तो अभी भी जान नहीं छूटी, खावन तो इस औरत से जान छुड़ाना चाहता है लेकिन तलाक रजाई देने से तो जान नहीं छूट रही। फिर दूसरी सूरत यह है कि खावन तीन तलाकें दे दे, जब तीन तलाकें देगा तो निकाह बिल्कुल टूट गया, अब रुजू की कोई सूरत नहीं है, लेकिन इस सूरत में नुकसान यह लाजिम आता है कि अब इसकी तलाफी मुमकिन नहीं, अब निकाह ऐसा टूट चुका है कि खावन दोबारा इस औरत से निकाह कर ही नहीं सकता, इल्ला यह कि यह औरत किसी और से निकाह करे और फिर उस शख्स का इंतकाल हो जाए या वो तलाक दे दे, तो फिर यह पहले खावन के लिए हलाल होगी। तो लिहाजा अगर खावन एक तलाक रजाई देगा तो औरत से जान नहीं छूट रही और वह जान छुड़ाना चाहता है, और अगर तीन तलाकें देगा तो फिर तलाफी की कोई सूरत ना रहेगी। तो लिहाजा खावंद मोहताज है, इसको इबानत के तसरुफ का हक होना चाहिए कि ये इबानत का तसरुफ कर सके, ये तलाक बाइन दे सके, भाई इसको हक होना चाहिए, ये मोहताज है। तो जब ये तलाक बाइन देगा तो अब इसकी हाजत पूरी हो गई, जब तलाक बाइन दे दी तो निकाह टूट गया, अब रुजू की कोई सूरत नहीं, और नीज इसकी तलाफी भी हो सकती है, बाद में अगर ये दोनों फिर निकाह करना चाहें तो दोबारा निकाह भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ खावंद को इबानत के तसर्रुफ की एहतियाज है कि वो औरत को अपने आप से फौरन क्या कर सके, जुदा कर सके, यानी तलाके बाइन दे सके, भाई तलाके बाइन दे सके, क्योंकि अगर तलाके रजई देगा तो वहां तो बगैर इरादे की भी रुजू मुमकिन रहेगा तो जान नहीं छूटी, और अगर तीन तलाके दे देगा फिर तो तलाफी की कोई सूरत ना रहेगी, लेकिन तलाके बाइन देगा तो अब इसकी हाजत पूरी हो गई। मालूम हुआ खावन तलाके बाइन का या यूं कहो इबानत का भी मोहताज है, उसको इबानत के तसरुफ की हाजत है, और इंसान को जिस तसरुफ की हाजत होती है शरीयत की तरफ से उसको वो तसरुफ मिलता है भाई, लिहाजा खावन को भी इबानत के तसरुफ का हक होगा भाई। बात समझ में आ गई, देखिए भाई वल्ला ना हमारी दलील यह है कि अन्न तसरुफ अल इबानत सदर मिन अहली ही, की जुदाई वाला तसरुफ सादिर हुआ है, ये पेश आया है मिन अहली ही अहले तसरुफ से, यानी खावन की तरफ से, मुजाफन इला महल्ली ही इस हाल में कि इस तसरुफ की निस्बत हो रही है इसके महल यानी बीवी की तरफ, अन विलायतिन शरईयतिन, और यह तसरुफ साबित है खावन के लिए किससे, विलायत शरिया से, वला खफा अफिल अहलियति वल महलियति, और अहलियत और महलियत में तो कोई खिफान नहीं, खावंद का इबानत का अहल होना और बीवी का इबानत का महल होना इसमें तो कोई खफा नहीं है, बाकी रह गई कि ये खावंद को ये तसरुफ का हक मिला है शरीयत की तरफ से, अब उसकी दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वह दलालत अलल विलायति, और ये इबानत की जो विलायत है इस पर दलालत जो है, यानी इस पर दलील यह है कि अन्नल हाजता मासतुन इला इस बातिहा, कि हाजत पेश आती है इला इस बातिहा इस विलायत के साबित करने की, क्योंकि हाजत पेश आती है इस विलायत के साबित करने की, कि खावन के पास इबानत की विलायत होनी चाहिए भाई, तो कहते हैं वह दलालत अल विलायती, और इस इबानत की विलायत पर दलालत यह है कि अनल हाजत मासत, उनके हाजत पेश आती है इला इस बात यहा कि इस विलायत इबानत को साबित किया जाए खावंद के लिए। कैला यंसद्दा अलैही बाबु तदारुकी, कैला यंसद्दा, इनसद्दा यंसद्दू के माने हैं बंद होना, कैला यंसद्दा अलैही ताकि कहीं खावंद पर बंद ना हो जाए, बाबु तदारुकी तलाफी का बाब, क्योंकि अगर तीन देकर वो जुदाई करेगा फिर तो तलाफी नहीं हो सकती, बाद में तो दोबारा निकाह की गुंजाइश न रहेगी, और अगर तलाक रजई देता है तो उसके अंदर बगैर इरादे के भी रुजू हो सकता है कि बीवी ने आकर उसका बोसा ले लिया, तो इससे क्या हो गया, रुजू हो जाएगा भाई। तो कहते हैं खावंद के लिए इस विलायत की हाजत है, कैला यंसद अलैही बाबु तदारुकी ताकि कहीं खावंद पर तलाफी का दरवाजा बंद ना हो जाए, वला यकाफी ओहदती हा बिल मुराजाती मिन गैरी कस्दिन, और ताकि कहीं खावंद वाके न हो जाए फी ओहदती हा इस औरत की जिम्मेदारी में, बिल मुराजाती मिन गैरी कस्दिन बगैर इरादे के रुजू करने से, बगैर इरादे के रुजू कर लिया किस तरह, मैंने बताया बीवी ने आकर खावंद का बोसा ले लिया, और जब बीवी ने आकर बोसा ले लिया रुजू हो गया, रुजू हो गया तो अब भी ये इसकी बीवी है लिहाजा अब भी इस औरत की जिम्मेदारियां खावंद पर ही हैं, नफका भी खावन को देना पड़ेगा और रिहाइश वगैरह भी खावन ही को देना पड़ेगी। तो बगैर इरादे के मुराजात की वजह से खावन जो है फिर इस औरत की जिम्मेदारी में वाकई हो गया। तो कहते हैं वला यका, और ताकि कहीं ऐसा ना हो खावन वाकई हो जाए फी ओहदतिहा इस औरत की जिम्मेदारी में, बिल मुराजाती मिन गैर कस्दिन बगैर इरादे के रुजू कर लेने से, वलैसत बिकिनायातिन अला तहकीक। तो यहां तक यह बात साबित हो गई कि खावंद के पास इबानत की विलायत मौजूद है, वो बीवी को एकदम भी अपने से जुदा कर सकता है भाई तलाके बाइन के जरिए। और नीस इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया था कि ये जो किनायात हैं ये तलाक से किनायात हैं, यानी अंति बाइनुन बोलकर अंति तालिकुन मुराद होता है, ये किससे किनाया है, तलाक से। तो उसका भी जवाब देंगे कि नहीं ये तलाक से किनाया नहीं है, तहकीक के मुताबिक ये तलाक से किनाया नहीं है, ये अपने माना का अमल करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने माना का अमल करते हैं। जैसे अंति बाइनुन, बाइनुन का क्या माना, जुदा, तो अंति बाइनुन का माना अंति तालिको नहीं है, अंति बाइनुन अपना अमल कर रहा है, और बाइन का क्या माना, जुदा, तो ये लफ्ज खावन से बीवी को जुदा कर रहा है अगर तलाक की नीयत की है, तो बाइनुन तलाक से किनाया नहीं है बल्कि बाइनुन अपना अमल कर रहा है, बाइनुन बोलकर तलाक मुराद नहीं, बाइनुन अपने माना का अमल कर रहा है, और बाइनुन का क्या माना है, जुदा करना, तो ये भी बीवी को खावन से जुदा कर देगा। तो कहते हैं वलैसत बिकिनायातिन अला तहकीकी, और ये अल्फाज जो हैं ये तलाक से किनायात नहीं है, अला तहकीक बिना बर तहकीक के, यानी तहकीक के मुताबिक ये तलाक से किनायात नहीं है, लिअन्नहा अवामिलु फी हकाइकिहा, इसलिए क्योंकि ये किनायात जो हैं ये अमल करने वाले हैं, फी हकाइकिहा अपनी हकीकतों में, ये अपनी हकीकतों में अमल कर रहे हैं यानी अपने हकीकी माना का फायदा दे रहे हैं, अंति बाइनुन का क्या माना, जुदा करना, तो लिहाजा इसने भी जुदाई वाला अमल कर दिया, तो ये अपने अमल का फायदा देते हैं, लिअन्नहा अवामिलु फी हकाइकिहा, इसलिए क्योंकि ये अमल करने वाले हैं अपनी हकीकतों में, वशर्तु तायुनु अहदी नौइल बैनूनती दून तलाकी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, इधर देखिए कि तलाक से किनाया है, ये तलाक से किनाया है, इसी वजह से इनमें तलाक की नीयत भी जरूरी है, इसी वजह से अंति बाइनुन में तलाक की नीयत भी जरूरी है, मालूम है ये तलाक से किनाया है, जबी तो तलाक की नीयत जरूरी है। जैसे मैं और आप जैद के बारे में बातें कर रहे थे और एक और शख्स आ गया, अब मैं जैद के बजाय फुलां का लफ्ज बोलता हूं कि फुलां मेरे पास आया था, तो देखो यहां भी मेरी नीयत क्या है, फुलां के जरिए कौन मुराद है, जैद मुराद है, कौन, जैद। तो यहां पर भी जब खावन अंति बाइनुन कहता है तो बाइनुन के जरिए उसकी नीयत क्या होती है, तालिकुन की नीयत होती है। बात समझ में आ गई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये किनायात जो हैं ये तलाक से किनाया है, इसीलिए तलाक की नीयत इनमें जरूरी है। हम जवाब देते हैं नहीं, ये तलाक से किनाया नहीं है, और ये अपने माना का अमल करते हैं, और नीयत शर्त है, लेकिन तलाक की नीयत शर्त नहीं है
जी।
बल्कि बैनूनत की नौ मुतायन करने की शर्त है। मसलन खावन ने बीवी से क्या कहा है, आंती बायनून, तू जुदा है, ये बैनूनत, ये जो जुदाई है ये बाई लिहाज भी हो सकती है कि तू मुझसे जुदा है, भी खावन बीवी को तलाक दे रहा है, और बात समझ में आ गई, बल्कि तलाक का लफ्ज जरा निकाल दो यहां से, उसकी वजह से आपको शुभा पड़ेगा। अंती बायनून, इसका यह माना भी हो सकता है कि तू जुदा है मुझसे, यानी मेरे निकाह से तू जुदा है, और अंती बायनून का यह माना भी हो सकता है कि तू और औरतों से जुदा है, तेरे जैसे हुस्न जमाल वाली या तेरे जैसी सिफात वाली तो और कोई नहीं, तू जुदा है सबसे। तो यहां मालूम हुआ बैनूनत की दो किस्में आ गई, एक बैनूनत आनी निकाह है और एक बैनूनत अनशय इन आखर है भाई, किसी दूसरी चीज में जुदाई। तो यहां जो नियत की शर्त लगाई गई है, खावन अंती बायनून कहते हुए तलाक की नियत शर्त नहीं है कि खावन तलाक की नियत करे, बल्कि बैनूनत की नौ मुतायन करे, खावन का इरादा क्या है, अंती बायनून, तू मेरे निकाह से जुदा है या तू और औरतों से जुदा है, ये दो अनवा में से एक नौ को का तायुन जरूरी है, क्योंकि किनाय में दोनों मानी का इहतमाल है, किनाय में दोनों मानी का इहतमाल है। तो यहां तलाक की नियत शर्त नहीं है, बल्कि बैनूनत की नौ की शर्त है, कौन सी बैनूनत कर रहे हो। तो लिहाजा वो अगर निकाह से बैनूनत की नियत करेगा तो फिर जुदा हो जाएगी। तो देखो किस चीज की नियत की, तलाक की नियत की या एक नौए बैनूनत की नियत की, एक नौए बैनूनत की नियत की कि तू निकाह से जुदा है। देखो तलाक का तो लफ्ज ही हमने जिक्र नहीं किया
जी।
तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि ये तलाक से किनाया है, इसीलिए तलाक की नियत जरूरी है। हम कहते हैं नहीं, तलाक की नियत नहीं जरूरी, बल्कि बैनूनत की नौ मुतायन करना जरूरी है कि निकाह से बैनूनत का इरादा किया है खावन ने या किसी और चीज में बैनूनत का इरादा किया है। बात समझ में आ गई, मालूम है तलाक की नियत भी शर्त नहीं है भाई। तो कहते हैं वह शर्त तायुन अहदी नौईल बैनूनती, और शर्त जो है तायुन अहदी नौईल बैनूनती, असल में था नौईनी, नौईनी, और इसकी इजाफत अल बैनूनत की तरफ हुई तो नून इजाफत से गिर गया। तो कहते हैं वह शर्त, और शर्त जो है तायुनु अहदी नौईल बैनूनती, वो बैनूनत की दो किस्मों में से एक का तायुन है। शर्त क्या है कि बैनूनत की दो किस्मों में से एक का तायुन किया जाए, दून तलाकी, ना के तलाक, तलाक का तायुन जरूरी नहीं है। वंतिकासुल अददी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे ये किनायात तलाक से किनाया है, इसीलिए इनकी वजह से तलाक का अदद भी कम हो जाता है
जी।
ये तलाक से किनाया है जब भी, तो इनकी वजह से तलाक का अदद कम हो जाता है
जी।
तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि भाई तलाक का अदद इसलिए कम होता है कि निकाह खत्म हुआ इनकी वजह से। क्या हुआ, और निकाह खत्म होने की दो ही सूरतें हैं, या निकाह को फसख करार दिया जाए या इसको तलाक करार दिया जाए। इनकी वजह से क्या होता है, निकाह खत्म होता है, और निकाह के खत्म होने की दो ही सूरतें हैं, या वो तलाक से खत्म होता है निकाह, या वो निकाह फस्ख निकाह की वजह से खत्म होता है कि निकाह को फसख करार दे दिया जाए। और बिल इत्तेफाक सबके नजदीक ये जो किनायात हैं ये फस्ख निकाह का फायदा नहीं देते, ये फस्ख निकाह के लिए नहीं है। तो जब फस्ख निकाह के लिए नहीं है तो दूसरी सूरत सिर्फ तलाक वाली रह गई, तो लिहाजा इसलिए इनकी वजह से तलाक साबित होगी, फस्ख निकाह तो साबित नहीं हुआ लेकिन तलाक फिर साबित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो बिल इत्तेफाक ये जो किनायात हैं ये फस्ख निकाह नहीं, जब फस्ख निकाह नहीं तो फिर इनको तलाक ही करार देना पड़ेगा, इसलिए तलाक का अदद कम होता है इनकी वजह से। तो कहते हैं वंतिकासुल अदद लिसुबूत तलाकी, और तलाक के अदद का कम होना लिसुबूत तलाकी, वो तलाक के साबित होने की वजह से है, बिना अन अला जवालिल वुसलती, बवजह इसके कि इसकी वजह से जोड़ जो है यानी निकाह का जोड़ जायल हो जाता है, वुसलतुन स्वाद के साथ, वुसलतुन कहते हैं जोड़ को, जोड़ और रबत दो चीजों के दरमियान, मुराद निकाह है। तो चूंकि इन किनायात से निकाह का जोड़ खत्म होता है, जब जोड़ खत्म हुआ तो फिर इसको या तो फस्खे निकाह करार देना पड़ेगा या तलाक करार देना पड़ेगा। निकाह खत्म होने की तो यही दो सूरतें हैं, और बिल इतफाक ये फसख तो नहीं, जब फसख नहीं तो फिर इनको तलाक ही करार देना पड़ेगा। तो इस सूरत में तलाक का आदद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर देखिए तर्जमा कहते हैं वंत कासुल आददिल सबूत तलाक, और तलाक के आदद का कम होना वो तलाक के साबित होने की वजह से है, बिना अन अला जवाल वसलती, बिना बर इसके कि इसकी वजह से निकाह का जो जोड़ है वो जायल हो जाता है। वही नमा यसिहु नियतु सलासिफीहा, ये कब एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये कि आपने हमें बताया कि ये जो किनायात हैं ये अपने माना का फायदा देते हैं
जी।
तो अंति बाइनुन ने जुदाई के माना का फायदा दिया तो फिर तो इसे एक ही तलाक होनी चाहिए, तीन तो होनी ही नहीं चाहिए
जी।
लेकिन आप अहनाफ कहते हैं कि तीन की नीयत भी सही है
जी।
तो उसका भी आप जवाब दे रहे हैं, कहते हैं वह इन नमाया से खो नीयत उस सलासिफीहा कि इनके अंदर तीन की नीयत भी सही है, लितनव्वुल बैनूनति इला गलीजतिन व खफीफतिन, बवजह बैनूनत के मुतनव्वे होने के गलीजा और खफीफा की तरफ, इसलिए क्योंकि बैनूनत की दो अनवा हैं, एक बैनूनत खफीफा है हल्की जुदाई और एक बैनूनत गलीजा है सख्त जुदाई, जुदाई जो तीन तलाकों से आती है। तो लिहाजा एक की नीयत भी सही और तीन की नीयत भी सही है, लेकिन दो की नीयत सही नहीं क्योंकि वो अदद महज है। तो कहते हैं वह इन नमा यसिह नीयत सलासिफीहा, और इनके अंदर तीन की नीयत भी सही है, लितनव्वुल बैनूनति इला गलीजतिन व खफीफतिन, इसलिए क्योंकि बैनूनत मुतनव्वे होती है गलीजा और खफीफा दो किस्मों की तरफ। वह इंदन इदाम नीयति यसबुतुल अदना, और नीयत जब न पाई जाए तो उस वक्त अदना साबित हो जाएगा। मालूम अंति बाइनुन में बैनूनत खफीफा का भी एहतमाल और बैनूनत गलीजा का भी, तो अगर बैनूनत गलीजा की नीयत नहीं है, तीन की नीयत नहीं है, तो फिर अदना यानी एक तलाक तो जरूर साबित हो जाएगी। यह माना है वइंदन इदाम नीयति, और नीयत के मादूम होते वक्त यानी जिस वक्त नीयत न पाई जाए, तीन तलाकों की या बैनूनत गलीजा की नीयत जब न पाई जाए तो यसबुतुल अदना, तो अदना बैनूनत साबित हो जाएगी यानी बैनूनत खफीफा, भाई एक तलाक वाकई हो जाएगी। आगे देखिए वला तसिहु नियतु सिनतैन इंदना खिलाफन लिजुफर रहिमहुल्लाह, ये बात पहले भी बयान हो गई कि किनायात के जरिए एक की नीयत भी सही और तीन की नीयत भी सही लेकिन दो की नीयत सही नहीं। तो कहते हैं वला तसिहु नियतु सिनतैन, और इनके जरिए दो की नीयत सही नहीं है, इंदना हमारे नजदीक, खिलाफन लिजुफर रहिमहुल्लाह बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्लाह के, हमारे नजदीक क्यों नहीं दो की नीयत सही, कहते हैं अन्नहु अददुन, इसलिए क्योंकि दो जो है वो अदद है, वकद बयन्नाहु मिन कब्लु, और तहकीक ये बात हम पहले बयान कर चुके हैं, हम पहले बयान कर चुके हैं क्योंकि दो अदद है और बाइनुन का लफ्ज़ तो मुफरद है और मुफरद अल्फाज के अंदर मुफरद माना की रियायत रखी जाती है, इससे या तो मुफरद हकीकी मुराद लेंगे या मुफरद हुक्मी मुराद लेंगे यानी सबका मजमुआ यानी पूरी जिंस, जबकि दो वो तो मुफरद नहीं है वो तो अदद है भाई, तो मुफरद अल्फाज के अंदर मुफरद का माना मलहूज होता है, ये बात चंद सबक कबल गुजरी थी भाई। हां अलबत्ता इमाम जुफर रहमतुल्लाह इसमें इख्तिलाफ फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि इनमें दो की नीयत भी सही है और उनकी दलील भी पीछे गुजरी थी दो तीन सबक कबल भाई। इमाम जुफर फरमाते हैं कि जब इनकी नायात के जरिए तीन की नीयत सही है तो तीन तो है कुल और दो है उसका जुज, तो जब कुल की नीयत सही है तो उसके जुज यानी दो की नीयत भी सही है भाई। आगे देखिए व इन काल अलहा इअतद्दी 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 وقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقي حيزا دين في القضاء, सूरत मसला ये, खावंद ने बीवी से कहा इअतद्दी 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 तीन मरतबा कहा, और इअतद्दी ये तो किनाया है तलाक से, इसमें तलाक के माना का भी एहतमाल और गैर तलाक का भी एहतमाल। अब खावंद से पूछा गया कि तुम्हारी क्या नीयत थी, वो कहता है पहला लफ्ज़ इअतद्दी जब मैंने कहा तो मेरी तलाक की नीयत थी और बाकी जो मैंने इअतद्दी कहा उसके जरिए मेरी नीयत थी कि तू इद्दत गुजार यानी हैज गुजार, तो पहले से मैंने तलाक दी है और बाकियों में उसको हैज गुजारने का हुक्म दे रहा हूं, यानी इद्दत अब तू गुजार, मैंने तुझे तलाक दे दी है। तो कहते हैं इस सूरत में कजाअन भी खावंद की तस्दीक की जाएगी, काजी भी क्या करेगा, खावंद की तस्दीक करेगा कसम के साथ। तो कहते हैं वह इन काल अल्लाह इअतदी व काला, और फिर खावंद कहता है नवई तो बिल उला तलाकन, के पहले इअतदी के जरिए मैंने तलाक का इरादा किया था, और बिल बाकी हैजन, और बाकी दो के जरिए मैंने हैज का इरादा किया था, दुई नफिल कजाई, तो कजा के अंदर भी उस खावंद की तस्दीक की जाएगी। लिअन्नहू नवा हकीकत कलामी ही, इसलिए क्योंकि उसने अपने कलाम की हकीकत का इरादा किया था। इअतदी का क्या माना है, तो इद्दत गुजार, तो उसने भी हकीकी माना का ही इरादा किया, पहले से तलाक का इरादा किया और बाकी दो से हकीकतन इद्दत गुजारने का यानी हैज गुजारने का इरादा किया है, और ये इसका हकीकी माना है। तो लिहाजा काजी भी क्या करेगा, उसकी तस्दीक करेगा। भाई लिअन्नहु नवा हकीकत कलामी ही, इसलिए क्योंकि खावन ने अपने कलाम की हकीकत की नीयत की है। वलिअन्नहु यअमुरु इम्रअतहु फिल आदति बिल इअतदाद बादत तलाकी, और नीस आदत भी इसी तरह है, खावन जब बीवी को तलाक दे देता है तो फिर उसको इद्दत गुजारने का हुक्म देता है। तो यहां पर भी पहले से तलाक दे दी और बाद वालों के जरिए इद्दत गुजारने का हुक्म दे रहा है। तो कहते हैं वली अन्नहु यअमुरु इम्रअतहु फिल आदति, इसलिए क्योंकि खावंद अपनी बीवी को हुक्म देता है फिल आदति आम लोगों की आदत में बिल इअतदादी इद्दत गुजारने का बाद तलाकी तलाक के बाद, फकाना जाहिरु शाहिदन लहू, तो जाहिर भी इसका गवाह है, जाहिर भी खावंद की सच्चाई की गवाही दे रहा है। व इन काल लम अनवी बिल बाकी शई अनफहिया सलासुन, और अगर खावन से पूछा गया हां भाई आपने क्या नीयत की थी, उसने कहा पहली के जरिए तो मैंने तलाक की नीयत की थी और बाकी दो के जरिए मैंने कोई नीयत नहीं की, तो कहते हैं इस सूरत में तीन तलाकें हो जाएंगी, इस सूरत में तीन तलाकें हो जाएंगी। भाई क्यों तीन तलाकें क्यों होंगी, उसने तो सिर्फ पहली के जरिए तलाक का इरादा किया। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि जब खामन ने पहला कहा इअतदी और इरादा किसका किया, तलाक का, तो गोया मुजाकराए तलाक शुरू हो गया, क्योंकि तलाक की बात चल पड़ी है और मुजाकराए तलाक के अंदर हमने बताया था इअतदी को कोई शख्स जिक्र करेगा तो क्या वाकई होगी, तलाक वाकई होगी, क्योंकि काजी को दलील चाहिए और दलील तो खावंद की नीयत है, खावंद की नीयत हम पूछेंगे, लेकिन यहां मुजाकरा तलाक खावंद को झुटला रहा है। जब पहली दफा अंति तालिकुन कह दिया, मालूम हुआ तलाक की बात शुरू हो गई, तो अगले इअतदी से भी अब क्या मुराद लेंगे, तलाक ही मुराद लेंगे भाई, कोई और माना मुराद नहीं लेंगे। तो कहते हैं वह इन काल लम अन वी बिल बाकी शई अन, और अगर खावन कहता है मैंने बाकी के जरिए किसी चीज की नीयत नहीं की, फहिया सलासुन, तो तीन तलाकें हो जाएंगी। लिया नहू लम्मा नवा बिल उलत तलाका, इसलिए क्योंकि खावन ने जब पहले इअतदी के जरिए तलाक की नीयत कर ली, सार अल हाल हाल मुजाकराती तलाकी, तो यह हालत मुजाकरा तलाक वाली हालत हो गई। फतायन अल बाकी यानी लि तलाक बिहाद ही दलालती, तो बाकी दो भी तलाक के लिए मुतायन हो गए इस दलालत की वजह से। मालूम हुआ मुजाकराए तलाक सिर्फ बीवी के तलाक के बारे में बहस करने से ही नहीं साबित होता, बल्कि तलाक की बात भी आ जाए तो मुजाकराए तलाक साबित हो जाता है। तो कहते हैं फतायन अल बाकी यानी लि तलाकी बिहाद ही दलालती, तो बाकी दो भी तलाक के लिए ही मुतायन हो जाएंगी इस दलालत की वजह से। फला युसद्दकुफी नफी नीयति, लिहाजा नीयत की नफी में खावन की तस्दीक नहीं की जाएगी। खावन तो कहता है मेरी कोई नीयत नहीं थी, लेकिन हम उसकी तस्दीक नहीं करेंगे। बेखिलाफ इमा ईदा काल लम अनवी बिल्कुल लि तलाका, बखिलाफ इस सूरत के कि जब खावन कहता है लम अनवी के मैंने नीयत नहीं की बिल्कुल सब के जरिए अतलाक तलाक की, मैंने सब के जरिए तलाक की नीयत नहीं की, यानी किसी के जरिए भी मैंने तलाक की नीयत नहीं की, तो अगर खावन ये कहता है लम अनवी बिल्कुल ली तलाक के मैंने किसी के जरिए भी तलाक की नीयत नहीं की, हैसुल्ला या काउशाई उन, इस सूरत में कुछ भी वाकई नहीं होगा। जब कहा था पहली में मैंने तलाक की नीयत की है तो मुजाकराए तलाक शुरू हो गया, लिहाजा अगली दो को भी क्या शुमार करेंगे, जब खावन ने कोई नीयत नहीं की तो भी तलाक शुमार करेंगे। और अगर खावन ने ये तीनों लफ्ज जिक्र किए इअतदी 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 और किसी में कोई नियत नहीं की, और अब वो कहता है कि मेरी तो नियत तलाक की नहीं थी, तो अब हम तस्दीक करेंगे क्योंकि यहां कोई मुजाकरा तलाक नहीं है, यहां कोई मुजाकरा तलाक नहीं, क्योंकि पहली से भी उसने तलाक की नियत नहीं की भाई, ये दूसरी सूरत है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये माना है हैसु ला यकाउ शैउन, इस क्योंकि कुछ भी वाकई यहां नहीं होगा, लिअन्नहु ला जाहिर युकद्दिबुहु, इसलिए क्योंकि यहां पर कोई ऐसा जाहिर नहीं है जो इस खावंद को झुटला रहा हो। व बिखिलाफ मा इदा काला, और बखिलाफ उस सूरत के कि जब खावंद यूं कहता है, अगर खावंद यूं कहता है मैंने आखिरी एतदी के जरिए तलाक की नीयत की थी, पहली दो में मैंने कोई नीयत नहीं की, तो इस सूरत में भी एक ही तलाक वाकई होगी क्योंकि आखिरी में उसने तलाक की नीयत की है और पहली दो वो तो मुजाकरा तलाक से पहले की बात है, तो वो जो पहले दो एतदी हैं वो तो मुजाकरा तलाक से पहले थे, लिहाजा उनको तलाक नहीं करार दिया जाएगा भाई। तो कहते हैं वह बेखिलाफ इमा इदा काला, और बखिलाफ उस सूरत के कि जब खामन ने कहा नवई तो बिसाल सती तलाक दून अल उलयनी, कि मैंने तीसरी के जरिए तलाक का इरादा किया है, दून अल उलयनी, ना कि पहली दो के जरिए, हैसुल्ला यकाउ इल्ला वाहिदतुन, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही तलाक वाकई होगी, لأن الحال عند الأولين لم تكن حال مذاكرة الطلاق, इसलिए क्योंकि पहले दो किनायों के वक्त हाल जो है वो मुजाकरा तलाक वाला नहीं था। وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النيه انما يصدق مع اليمين, यहां से साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि हम जो जिक्र कर रहे हैं बाज जगह कि काजी खावंद की तस्दीक करेगा, तो ये वैसे तस्दीक नहीं करेगा, कसम के साथ उसकी तस्दीक करेगा, खावंद कसम उठाकर कहेगा कि वल्लाह मेरी तलाक की नीयत नहीं थी भाई। तो कहते हैं वफी कुल मौज़िउ युसद्दकु ज़ौजु अला नफ़ी नीयति, और हर ऐसा मकाम जिसमें खावंद की तस्दीक की जाएगी नीयत की नफी पर, इन्नमा युसद्दकु माल यमीन, तो वो कसम के साथ ही तस्दीक की जाएगी, लिअन्नहु अमीनुन फिल इखबार अम्मा फी ज़मीरिही, खावंद क्या कहता है कि मेरी नीयत नहीं थी, मालूम हो वो अपने दिल की खबर दे रहा है
जी।
अपने दिल की खबर दे रहा है, और दिल की खबर देने में तो इंसान अमीन है, अमानतदार है, और अमीन की बात जैसे कसम के साथ कबूल की जाती है, तो इस खावंद की बात भी कसम के साथ कबूल की जाएगी, क्योंकि दिल की बात को तो उसके अलावा किसी और को पता नहीं, तो वो इसमें अमीन की तरह है, जैसे कि किसी के पास कोई अमानत रखवाई जाए तो उसकी बात जैसे कसम के साथ कबूल की जाती है, यहां इसकी बात भी कसम के साथ कबूल की जाएगी। तो कहते हैं लिअन्नहु अमीनुन फिल इखबार अम्मा फी ज़मीरिही, इसलिए क्योंकि वो अमानतदार है, फिल इखबार खबर देने में, अम्मा फी ज़मीरिही वो जो उसके दिल में है, वल कौल कौलुल अमीनी माल यमीनी, और कौल जो है वो अमीन का मोतबर होता है, माल यमीनी साथ कसम के। आगे देखिए बाबू तफवीज तलाक फसल फिल इख्तियार, बाबू तफवीज तलाक फवज युफवीज तफवीज का माना है सुपुर्द करना, बाज औकात खावन तलाक को बीवी के सुपुर्द कर देता है कि तू अपने आप को तलाक देना चाहती है तो तलाक दे दे, तो खावन ने इख्तियार किसको दे दिया, बीवी को दे दिया। तो इस बाब के अंदर साहिब हिदायत इस तफवीज तलाक को बयान करेंगे कि खावन तलाक किसके सुपुर्द कर दे, बीवी के, या बाद औकात खावन किसी और के सुपुर्द कर देता है, खावन एक आदमी से कहता है कि तुम जाकर मेरी तरफ से मेरी बीवी को तलाक दे दो, तो देखो खावन ने उसको वकील बना दिया, उसको इख्तियार दे दिया तलाक देने का, तो इसको तफवीज तलाक कहते हैं भाई। तो कहते हैं बाबू तफवीज तलाक, ये बाब है तलाक सुपुर्द करने के बारे में, फसल फिल इख्तियार, ये फसल है इख्तियार के बारे में। याद रखो जैसे तलाक दो किस्म पर है, एक सरीह और एक किनाया, सरीह है साफ लफ्जों में तलाक, और किनाया जिसमें और मानी का भी इहतेमाल हो, यानी गोलमोल बात हो। इसी तरह ये जो खावन बीवी को तलाक का इख्तियार देता है ये भी दो किस्म पर है, या सरीह होगा या किनाया। सरीह मसलन खावन बीवी से कहता है तल्लिकी नफ्सकी, तू अपने आप को तलाक दे दे, देखो तल्लिकी नफ्सकी, सरीह लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है खावन, तो देखो ये इख्तियार दे रहा है तलाक का और सरीह लफ्ज के साथ। اور بعض اوقات گول مول لفظ کے ساتھ خاوند اختیار دے گا. مثلا خاوند کہتا ہے اختاری تو اختیار کر لے. اب اس میں طلاق کا بھی احتمال ہے کہ تم مجھ سے جدائی چاہتی ہے تو اپنے آپ کو اختیار کر لے, تم مجھ سے جدا ہو جائے گی. یا کسی اور چیز میں اختیار دیتا ہے اس کو خاوند کہ اس نفقے یا اس نفقے میں سے جو تو چاہتی ہے اختیار کر لے, یا اس کپڑے اور اس کپڑے میں سے جو تو چاہتی ہے اختیار کر لے وہ تو لے لے. تو اختیاری اس کے اندر طلاق حوالے کرنے کا بھی احتمال اور غیر طلاق کا بھی احتمال. تو معلوم ہوا خاوند جو بیوی کو طلاق سپرد کرتا ہے یا تو یہ صریح لفظ سے ہوگا یا کنائے سے. اور پھر کنائے کے اندر یا تو خاوند اختیاری کا لفظ استعمال کرے گا یا امرو کی بھی یدی کی, تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو یا اس کو استعمال کرے گا یا صریح لفظ استعمال کرے گا یا ساتھ مشیت وغیرہ کہ اگر تو چاہتی ہے تو چاہتی ہے. تو ان کو الگ الگ فصلوں میں صاحب ہدایہ بیان فرمائیں گے. یہ پہلی فصل ہے اختیار کے بارے میں کہ خاوند نے اختیاری کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اختیاری, تو اختیار کر لے. اگلی فصل آئے گی فصل فی الامر بالیدی کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے, اس کے بارے میں مسائل صاحب ہدایہ بیان کریں گے. اور پھر اس کے بعد مشیت کے بارے میں, اگر خاوند مشیت کو بھی ذکر کر دیتا ہے اذا شئت, جب تو چاہتی ہے, تو ان تینوں کو الگ الگ فصلوں میں صاحب ہدایہ بیان فرمائیں گے. اور یہ سب کس میں ہیں؟ باب تفویض طلاق کے اندر. ان سب میں خاوند بیوی کو طلاق حوالے کر رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں باب تفویض طلاق, یہ باب ہے طلاق سپرد کرنے کے بارے میں. فصل فی الاختیار, یہ فصل ہے اختیار کے بارے میں, یعنی وہ اختیاری کا لفظ جو خاوند ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں مسائل ذکر کریں گے. وَإِذْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي, اور جب خاوند نے اپنی بیوی سے کہا اختاری کہ تو اختیار کر لے, ینوی بذالک الطلاق, اور خاوند اس کے ذریعے طلاق کی نیت کرتا ہے. یہ قید ضروری ہے بھائی, کیونکہ اختاری کنایہ ہے اور کنایے کے اندر نیت ضروری ہے کیونکہ وہاں اور معانی کا بھی احتمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ, جب خاوند نے اپنی بیوی سے کہا اختاری کہ تو اختیار کر لے, ینوی بذالک الطلاق, اس کے ذریعے خاوند طلاق کی نیت کرتا ہے. او قال لها طلقی نفسک, یا خاوند بیوی سے کہتا ہے طلقی نفسک, تو اپنے آپ کو طلاق دے دے. دیکھو یہ صریح آ گیا, اس میں نیت کی ضرورت نہیں. فلحا ان تطلق نفسها ما دامت فی مجلسها ذالک, تو عورت کو یہ حق ہے ان تطلق نفسها کہ وہ اپنی ذات کو طلاق دے دے. ما دامت فی مجلسها ذالک, جب تک وہ اس مجلس میں موجود ہے. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب خاوند بیوی کو طلاق کا اختیار دیتا ہے تو وہ مجلس تک رہے گا, وہ مجلس تک رہے گا, اور مجلس ختم تو اختیار بھی ختم. اور اگر مجلس تو نہیں ختم ہوئی لیکن بیوی نے کوئی ایسا عمل کیا جو اعراض پر دلالت کر رہا ہے منہ موڑنے پر, کہ وہ اس بات سے منہ موڑ رہی ہے, اس کو یہ بات پسند نہیں آئی, تو پھر اس صورت کے اندر بھی مجلس بے شک وہی ہو لیکن اس صورت میں جب اعراض پایا جائے گا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا. مثلا خاوند نے بیوی سے کہا اختاری, اور بیوی یہ بات سنتے ہی کھڑی ہو گئی, بس اس کا اٹھنا یہ اعراض پر دلالت کر رہا ہے, معلوم ہو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو دیکھو ابھی مجلس نہیں بدلی, وہ وہیں پر ہے عورت, لیکن صرف اعراض والی ایک چیز آ گئی تو اس کا اختیار ختم. لیکن اگر وہ صرف اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ آواز دے کر گواہوں کو بلا رہی ہے, گھر کے باقی افراد کو, کہ یہ مجھے اختیار دی اس نے دے دیا ہے, تم سب آ جاؤ گواہ ہو جاؤ میں اپنے آپ کو طلاق دینے لگی ہوں, تو اس صورت میں پھر اس کا یہ کھڑا ہونا اعراض پہ نہیں دلالت کرے گا, لہذا اس کو اختیار رہے گا. یا اسی طرح خاوند نے بیوی سے کہا اختاری, تو اپنے آپ کو اختیار کر, یعنی اپنے آپ کو طلاق دینا چاہتی ہے تو طلاق دے دے, اور عورت نے موبائل نکالا اور اپنی والدہ کو فون کیا اور ان کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دی. دیکھو اس نے یہ والی بات چھوڑ کر ایک اور بات شروع کر دی, ایک نیا کام شروع کر دیا, تو یہ بھی اعراض پر دلالت کر رہا ہے. اب بے شک وہ وہیں بیٹھی ہے, مجلس وہی ہے, لیکن اس کا اختیار ختم ہو گیا کیونکہ اس کا نئی بات کے اندر شروع ہو جانا وہ اعراض پہ دلالت کر رہا ہے. لیکن اگر اس نے فون صرف اس لیے ملایا ہے کہ اب اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہتی ہے, تو پھر یہ فون ملانا اعراض پر دلالت نہیں کرے گا. تو حاصل کلام کیا؟ अगर खावंद बीवी को इख्तियार देगा तो कब तक रहेगा? मजलिस के इख्तिताम तक, जितनी भी लंबी मजलिस हो जाए, चाहे एक घंटा है, दो घंटे है, चार घंटे है, छह घंटे है, जब तक मजलिस है औरत को इख्तियार है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम पाया गया जो एराज पे दलालत कर रहा है तो फिर इख्तियार खत्म हो जाएगा, चाहे मजलिस वही हो लेकिन एराज वाली चीज आ गई तो इख्तियार खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं फलाहा अंतु तल्लिका नफसहा मादामत फी मजलिसी हाजालिका, तो उस औरत को यह हक है कि वो अपने आप को तलाक दे दे जब तक वो उस मजलिस में है। फ इनकामत मीन हो, अगर वो औरत उस मजलिस से उठ गई और अखजत फी अमलिन आखरा, या वो किसी और काम में शुरू हो गई, किसी और काम में शुरू हो गई, अगरचे मजलिस वही है, तो खरजल अमरु मी यदिहा, तो मामला उसके हाथ से निकल जाएगा, इख्तियार खत्म हो जाएगा। लिअन्न अल-मुखय्यरत लहल मजलिस बिइज्माअ सहाबती रजी अल्लाह तआला अन्हुम। लिअन्न अल-मुखय्यरत, मुखय्यरा वो औरत जिसको खावंद ने इख्तियार दिया है, तो ये औरत क्या कहलाती है? मुखय्यरा। इसलिए क्योंकि मुखय्यरा के लिए, लिअन्न अल-मुखय्यरत लहल मजलिसु, मुखय्यरा के लिए मजलिस ही होती है, यानी मजलिस तक ही उसको इख्तियार रहता है। बि इजमाअ सहाबती रजी अल्लाह तआला अन्हुम, सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम के इजमा से, यानी उनके इजमा से यह बात साबित है कि जिस औरत को खावंद इख्तियार देता है उसके लिए वो मजलिस है, उस मजलिस तक उसको इख्तियार रहता है। तो कहते हैं लिअन्न अल-मुखय्यरत लहल मजलिसु बिइज्माअ सहाबती, इसलिए क्योंकि मुखय्यरा जो है उसके लिए मजलिस होती है सहाबा के इजमा से। वलिअन्नहु तमलीकुल फिअल मिनहा, और नीज इसलिए क्योंकि ये जो खावंद ने क्या किया है, इख्तारी कहा है या तल्लिकी नफसा की कहा है, तो इसमें खावंद बीवी को तलाक का मालिक बना रहा है, तलाक का मालिक बना रहा है। और याद रखो तमलीकात जवाब का तकाजा करती हैं उसी मजलिस में। तमलीकात, जब भी एक आदमी को आप किसी चीज का मालिक बनाएं तो उसी मजलिस में उसकी तरफ से जवाब जरूरी है, वरना वो उसका इख्तियार खत्म हो जाएगा। मसलन आप बेउशिरा करते हैं तो जिस मजलिस में ईजाब हो उसी मजलिस में कबूल जरूरी है। मसलन आपकी ये किताब है, आपने अपने साथी से कहा यह किताब मैंने आपको 100 रुपए में बेच दी, आप उसको इस किताब का मालिक बना रहे हैं बेय के जरिए, तो इसी मजलिस में उसकी तरफ से कबूल भी जरूरी है, इसी मजलिस में उसकी तरफ से कबूल भी जरूरी है। अगर वो इस मजलिस में कबूल नहीं करेगा तो फिर आपका यह ईजाब बातिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ईजाब मजलिस के बाद भी बाकी रहे फिर तो लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। मसलन एक आदमी को आप कहते हैं किताब मैंने आपको 100 रुपए में बेच दी, और अगर ये इख्तियार मजलिस के बाद भी रहा तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, उठकर चला गया, अब आपको नहीं पता, पता नहीं ये खरीदता या नहीं खरीदता, और किसी और को भी नहीं बेच सकते क्योंकि आप इसको ईजाब कर चुके हैं, तो लोग तंगी और मुश्किल में पड़ जाएंगे, हरज में पड़ जाएंगे। लिहाजा तमलीकात में क्या जरूरी है कि उसी मजलिस में जवाब होना चाहिए, उसी मजलिस में कबूल होना चाहिए। तो एक तो सहाबा का इजमा आ गया भाई कि मजलिस तक इख्तियार रहेगा। अब अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वली अन्नहु तमलीकुल फिअल मिनहा, और नीत इसलिए क्योंकि यह खावंद की तरफ से औरत को फेल का मालिक बनाना है, खावंद उसको फेले तलाक का मालिक बना रहा है। वह तमलीकात तक्तजी जवाबन फिल मजलिसी, और तमलीकात जो है यह तकाजा करती हैं जवाब का उसी मजलिस में, मालिक बनाना उसी मजलिस में जवाब का तकाजा करता है, वरना तो मैंने बताया लोग हरज में और तंगी में पड़ जाएंगे कि किसी को एक दफा इजाब कर दिया अब वो सारी जिंदगी जब मर्जी चाहे कबूल कर ले, लोग तंगी और हरज में पड़ जाएंगे। मसलन आप एक आदमी को कहते हैं ये गाड़ी आपको मैंने 10 लाख में बेच दी
जी।
और उसने मजलिस में कबूल नहीं किया, लेकिन अगर इख्तियार बाद में भी बाकी रहता है कबूल का, तो बाद में वो किसी दिन आकर कह देगा मुझे कबूल है, हालांकि आपका तो इरादा बदल चुका है, अब गाड़ी बेचने का इरादा नहीं, तो देखो लोग तंगी और हरज में पड़ जाएंगे। तो कहते हैं कमाफिल बैअ, जैसे कि बैअ के अंदर होता है लिअन्न साआतिल मजलिस उतुबिरत साआतन वाहिदतन, लिअन्न साआतिल मजलिस, इसलिए क्योंकि मजलिस की जो घड़ियां हैं, मजलिस के जो औकात हैं, उतुबिरत साआतन वाहिदतन, उनको एक ही घड़ी शुमार किया जाता है। मजलिस के औकात को एक ही वक्त सारा शुमार किया जाता है। आप भी जैसे देखते हैं कि हाफिज कुरान मसलन आयत सजदा का तकरार कर रहा है, तो एक मजलिस के अंदर एक आयत सजदा को जितनी मर्तबा भी हाफिज कुरान पढ़ ले, एक ही सजदा उस पर वाजिब होगा। इसलिए क्योंकि मजलिस के औकात को एक ही वक्त शुमार किया जाता है। यह माना है लिअन्ना साआतिल मजलिस उतुबिरत साआतन वाहिदतन, इसलिए क्योंकि मजलिस की जो घड़ियां हैं, जो औकात हैं, उनको एक ही वक्त शुमार किया जाता है। इल्ला अन्नल मजलिस तारतन यतबद्दलु बिदहाबि अनहु, मगर एक बात है कि अन्नल मजलिस तारतन यतबद्दलु, कि मजलिस कभी कभार बदल जाती है, बिदहाबि अनहु उससे चले जाने से। कभी कभार मजलिस कैसे बदलती है कि आप वहां से उठकर चले जाएं। व मर्रतन बिल इश्तिगाल बि अमलिन आखरा, और कभी कभार मजलिस बदल जाती है बिल इश्तिगाल बि अमलिन आखरा, किसी दूसरे काम में मशगूल होने से। तो यहां भी हकीकतन तो मजलिस नहीं बदली, लेकिन हुक्मन मजलिस बदल गई। इस मजलिसुल अक्ल गैरु मजलिसिल मुनाजरती व मजलिसुल क़िताल गैरुहुमा, इस मजलिसुल अक्ल गैर मजलिसिल मुनाजरती, जैसे खाने पीने की जो मजलिस है वो गैर है मजलिस मुनाजरा से
जी।
ये गैर है मजलिस मुनाजरा से, जैसे चंद साथी बैठकर खाना खा रहे हैं, ये एक मजलिस है, और खाने के इख्तिताम तक दोनों उनमें बहस व तकरार और मुनाजरा शुरू हो गया किसी मसले पर, तो अब हम कहेंगे मजलिस बदल गई, क्योंकि पहले मजलिस और थी, वो खाना खाने की मजलिस थी और ये मुनाजरे की मजलिस है। तो देखो हालत बदल गई, एक नए काम में शुरू हो गए। या इसी तरह फिर बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो अब यह लड़ाई झगड़ा ये तीसरी मजलिस गोया शुरू हो गई, खाने की मजलिस और थी, मुनाजरे की मजलिस और थी, और ये अब लड़ाई की हाथापाई की जो मजलिस है ये और है भाई। तो कहते हैं इस मजलिसुल अक्ली गैरु मजलिसिल मुनाजरती, इसलिए क्योंकि खाने पीने की मजलिस वो गैर है मुनाजरे की मजलिस से। वह मजलिसुल क़िताल गैरुहुमा, और लड़ाई झगड़े की जो मजलिस है वो इन दोनों के अलावा है। वयबतुलु खियारुहा बिमुजर्रदिल क़ियामी, मैंने आपको बतलाया कि अगर खावन ने बीवी को इख्तियार दिया और बीवी खड़ी हो गई तो उसका उठना एराज पर दलालत करता है, लिहाजा उसका इख्तियार बातिल हो जाएगा। तो कहते हैं वयब तुलु खियार उहा बिमुजर्रदिल क़ियामी, और औरत का खियार बातिल हो जाएगा बिमुजर्रदिल क़ियामी महज उठने से ही। लिअन्नहु दलीलुल एराज, इसलिए क्योंकि ये एराज की दलील है, मुंह मोड़ने की दलील है। लेकिन मैंने बताया अगर वो गवाहों को बुलाने के लिए खड़ी हुई है, उनको आवाज देने के लिए, तो फिर उसका इख्तियार बातिल नहीं है भाई। बेखिलाफ सर्फ वसलमी, बेखिलाफ बेअ सर्फ और बेअ सलम के। लिअन्नल मुफसिदा हुनाकल इफ्तिराक मिन गैर कब्ज़िन, इसलिए क्योंकि वहां पर मुफसिद करने वाली चीज जो है अल इफ्तिराक मिन गैर कब्ज़िन, वो बगैर कब्जे के जुदा होना है। भाई देखिए एक तो आम बैअ है, एक बैअ सर्फ एक खास किस्म की बैअ है, और इसी तरह एक बैअ सलम ये भी खास किस्म की बैअ है। आम किस्म की जो बुयू होती हैं, याद रखो इनमें तायीन मबीहा और जिक्र समन जरूरी है
जी।
क्या जरूरी? तायीन मबीहा, मबीहे की तायीन होनी चाहिए कि ये वाली चीज मैं आपको बेच रहा हूं, तो तायीन मबिया भी जरूरी और जिक्र समन, समन का जिक्र भी जरूरी है कि कितने में बेच रहा हूं
जी।
तो आम बै के अंदर तायीन मबिया भी जरूरी और जिक्र समन भी जरूरी है, दोनों में से अगर एक चीज भी ना पाई गई तो इस सूरत में बै फासिद हो जाएगी। मसलन एक शख्स दूसरे से कहता है कि मैंने आपको एक गाय 80,000 रुपए में बेच दी, गाय वहां मौजूद नहीं है, अब समन को तो जिक्र कर दिया है लेकिन मबीहा मुतायन नहीं, बाद में झगड़ा होगा, बाय चाहेगा एक सस्ती सी गाय दे दूं और मुश्तरी चाहेगा आला किस्म की गाय मुझे मिले, तो देखो झगड़ा आएगा। तो तायीन मबीहा जरूरी है कि ये चीज है, ये गाय है जो मैं आपको बेच रहा हूं, और नीस जिक्र समन भी जरूरी है भाई। और ये तो आम बैअ में, और जबकि बैअ सर्फ वो है जिसके अंदर दोनों तरफ जो इवज हैं वो समन की कबील से हो। याद रखो समन तीन चीजें हैं, सोना, चांदी और करंसी। سونا چاندی اور کرنسی یہ جو نوٹ وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں تو سونا اور چاندی یہ خلقتن سمن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی بطور سمن کے کیا ہے چنانچہ اسی سونے سے پھر اشرفی بنتی ہے یعنی دینار اور اس چاندی سے درہم پھر بنائے جاتے ہیں تو یہ خلقتن ہی سمن ہیں جبکہ کرنسی جو ہے اس کو ہم نے مقرر کیا ہے سمن کے طور پر سونے اور چاندی کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور کرنسی کو ہم نے مقرر کیا ہے تو بہرحال یہ تین چیزیں سمن کی قبیل سے ہیں تو بیع صرف اسے کہتے ہیں کہ دونوں طرف جو عوض ہیں وہ سمن کی قبیل سے ہوں یعنی سونا چاندی یا کرنسی ہو مثلا آپ سونا دے کر سونا خریدتے ہیں یا چاندی دے کر چاندی خریدتے ہیں یا کرنسی دے کر کرنسی خریدتے ہیں یہ سب بیع صرف ہیں چاہے دونوں طرف ایک جنس ہو پھر تو برابری ضروری ہے اور اگر جنسیں الگ الگ ہوں پھر کمی بیشی جائز ہے مثلا آپ نے سونا دیا اور چاندی خرید لی یا چاندی دی اور سونا خرید لیا یا کرنسی دی اور سونا خرید لیا آپ سونار کے پاس زیور بنوانے گئے کرنسی دی اور زیور خرید لیا تو یہ سب کیا ہیں بیع صرف ہیں جس میں دونوں طرف عوض جو ہیں وہ سمن کی قبیل میں سے ہیں اور بیع صرف میں یاد رکھو عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے اگر قبضے کے بغیر دونوں جدا ہو گئے تو بیع صرف باطل مثلا ایک آدمی کے ساتھ آپ نے بیع صرف کی آپ نے اس کو کہا میں آپ کو یہ $1,00,000 دیتا ہوں اور آپ مجھے اس کے عوض پاکستانی کرنسی دے دیں تو اب یہ دیکھو دونوں طرف کرنسی ہے تو یہ بیع صرف ہے اور بیع صرف میں کیا ضروری مجلس کے اندر عوضین پر قبضہ ضروری ہے آپ نے بیع کر لی آپ نے اس کو ڈالر دے دیے اس نے کہا آپ بیٹھیں میں ساتھ والے کمرے سے پیسے لے کر آتا ہوں نہیں بھائی آپ جیسے ہی یہاں سے اٹھیں گے بیع باطل ہو جائے گی ضروری ہے کہ دونوں اسی مجلس میں عوضین پر قبضہ کریں اور اسی طرح بیع سلم ہے بیع سلم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو پیسے دیتے ہیں کہ مثلا مجھے 3 ماہ بعد فلاں قسم کی گندم آپ نے دینی ہے یہ پیسے آپ لے لیں اور 3 ماہ بعد فلاں فلاں قسم کی اتنی اتنی گندم آپ نے دینی ہے جی. تو اس کے اندر دیکھو سمن اسی مجلس میں دیے جاتے ہیں اور مبیعہ جو ہے وہ خاص متعین مدت کے بعد ملے گا جی. اس کو بیع سلم کہتے ہیں اور اس کی شرائط ہیں باقاعدہ جو علماء ذکر فرماتے ہیں کتب فقہ کے اندر ذکر ہیں تو یہ جو بیع سلم ہے اس کے اندر جو سمن آپ دیں گے اسی مجلس میں گندم تو 3 مہینے بعد مثلا ملے گی لیکن سمن آپ ابھی دیں گے اس سمن کو رأس المال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رأس المال تو رأس المال پر اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے تو اب بات چل رہی تھی کہ خاوند نے بیوی کو اختیار دیا اور بیوی اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہتے ہیں اس کا اختیار باطل ہو گیا کیونکہ اس کا اٹھنا اعراض پر دلالت کرتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بیع صرف میں دونوں عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے اور بیع سلم میں رأس المال پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے لیکن وہاں آپ کہتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی کھڑا ہو گیا پھر بھی بیع باطل نہیں پھر بھی بیع باطل نہیں تو اس کا جواب دیں گے صاحب ہدایہ کہ بھائی وہاں پر بغیر قبضے کے مجلس سے جدا ہونا یہ بیع کو باطل کرے گا اعراض والی کوئی چیز وہ اس بیع کو باطل نہیں کرے گی جبکہ یہ اختیار یہ تو اعراض والی چیز سے بھی باطل ہو جاتا ہے تو دونوں میں فرق ہے اختیار کے اندر اعراض سے بھی اختیار ختم ہو جائے گا جبکہ بیع صرف اور بیع سلم میں اعراض وغیرہ سے عقد ختم نہیں ہوگا بلکہ اگر عوضین پر قبضہ کیے بغیر مجلس سے جدا ہو جائیں پھر بیع باطل ہوگی بھائی کہتے ہیں بخلاف الصرف والسلم بخلاف بیع صرف اور بیع سلم کے لأن المفسد هناك الافتراق من غیر قبض اس لیے کیونکہ عقد کو فاسد کرنے والی چیز وہاں پر الافتراق من غیر قبض وہ جدا ہونا ہے بغیر قبضے کے وہاں عقد کو فاسد کرنے والی چیز کیا ہے بغیر قبضے کے جدا ہونا یہ عقد کو فاسد کرتا ہے اعراض عقد کو فاسد نہیں کرتا ثم لا بد من النیت فی قوله اختاری لانه یحتمل جی پھر اس میں نیت بھی ضروری ہے اختاری کے اندر کیونکہ اس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے ثم لا بد من النیت فی قوله اختاری, کہتے ہیں پھر خاوند کے قول اختاری کے اندر اس کی نیت بھی ضروری ہے. لانه یحتمل تخییرها, اس لیے کیونکہ یہ کلام یہ بھی احتمال رکھتا ہے, تخییرها فی نفسها, کہ خاوند اس کو اختیار دے رہا ہے اس کی ذات کے بارے میں. ویحتمل تخییرها فی تصرف آخر غیره, اور یہ احتمال بھی ہے اس میں کہ تخییرها فی تصرف آخر غیره, کہ خاوند اس کو اختیار دے رہا ہے کسی دوسرے تصرف کا, غیره, اس طلاق کے علاوہ کسی اور تصرف کا اختیار دے رہا ہو. آگے دیکھیے, فَإِنْ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً, اگر عورت جواب میں کہتی ہے خاوند نے کہا تھا اختاری, عورت کہتی ہے اخترت نفسی, میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا, تو پھر اس صورت میں طلاق بائن ہو جائے گی. تو کہتے ہیں فَإِنْ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِ, اور اگر خاوند کے قول اختاری کے اندر عورت نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا, کانت واحدتن بائنتن, تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی. والقیاس اللہ یقع بہذا شیئا وان نوى الزوج الطلاق, اور قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ یقع بہذا شیئا, ان کے اس کے ذریعے کچھ بھی واقع نہیں ہونا چاہیے. وان نوى الزوج الطلاق, اگرچہ خاون طلاق کی نیت کر لے, لانه لا يملك الايقاع بهذا اللفظ, اس لیے کیونکہ خاون خود مالک نہیں ہے کہ وہ طلاق واقع کرے, بهذا اللفظ اس لفظ کے ذریعے, فلا یملک تفویض الی غیرہ, تو وہ غیر کو بھی طلاق سپرد کرنے کا مالک نہیں اس لفظ کے ذریعے. بھئی دیکھو اختاری قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے اگرچہ خاوند نیت بھی کرے, اس لیے کیونکہ اختار اختار اس مادے سے تو خود خاوند طلاق واقع نہیں کر سکتا. خاوند اگر بیوی کو یوں کہے اختر تو نفسی, تو اس سے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. تو جب اختارو کے لفظ کے ذریعے خاوند خود طلاق واقع نہیں کر سکتا, تو اس لفظ کے ذریعے دوسرے کو بھی طلاق کا مالک نہیں بنا سکتا. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے, یہ معنی ہے. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے, والقیاس اللہ یقع بہذا شیء, اور قیاس تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے کوئی چیز واقع نہ ہو. وان نوى الزوج الطلاق, اگرچہ خاون طلاق کی نیت کر لے, لانه لا یملک الایقاع بهذا اللفظ, اس لیے کیونکہ خاون جو ہے وہ مالک نہیں ہے طلاق واقع کرنے کا اس لفظ کے ذریعے, فلا یملک التفویض الی غیره, تو وہ دوسرے کو طلاق سپرد کرنے کا مالک بھی نہیں ہوگا اس لفظ کے ذریعے. الا ان نستحسنناه لاجماع الصحابه رضی اللہ تعالی عنہم, الا ان نستحسنناه, مگر یہ کہ ہم نے اس کو استحسان قرار دیا ہے, لاجماع الصحابه رضی اللہ تعالی عنہم, صحابہ کے اجماع کی وجہ سے, صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ اس کی وجہ سے اگر عورت اپنے آپ کو اختیار کرے گی تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی. دیکھو پھر استحسان کا ذکر آیا, اور کس کو استحسان کہا؟ اجماع صحابہ کو. حالانکہ طلبہ میں عموماً کیا مشہور ہے کہ صرف قیاس خفی کو استحسان کہتے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ استحسان وہ متفق علیہ دلیل جس کے مقابلے میں قیاس آ جائے. ہاں زیادہ تر اس کا اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے, لیکن قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو. تو یہاں پر دیکھو اجماع صحابہ کو استحسان کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے مقابلے میں قیاس موجود ہے. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے اسے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے بھائی, کیونکہ خاوند خود طلاق اس سے نہیں دے سکتا, تو دوسرے کو بھی اس سے طلاق کا مالک نہیں بنا سکتا. تو کہتے ہیں الا ان نستحسنناه لاجماع الصحابه رضی اللہ تعالی عنہم, مگر یہ کہ ہم نے اس کو استحسان قرار دیا ہے اجماع صحابہ کی وجہ سے. ولانه بسبیل من ان یستدیم نکاحها او یفارقها, اب عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ خاوند نے اختاری کہا اور عورت نے اخترت نفسی کہا تو طلاق بائن ہونی چاہیے. اب اس کی عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں, ولانه بسبیل من ان یستدیم, استدام یستدیم کے معنی ہے دائم رکھنا, دائم رکھنا. ولانه بسبیل, اس لیے کیونکہ خاون جو ہے ایسے راستے پر ہے, من ان یستدیم نکاحها او یفارقها, کہ وہ نکاح کو دائم بھی رکھ سکتا ہے, او یفارقها, یا اس عورت سے جدا بھی ہو سکتا ہے. خاوند کو شریعت نے اختیار دیا ہے, وہ ایسے راستے پر ہے کہ وہ نکاح کو دائم بھی رکھ سکتا ہے اور اس عورت سے جدائی بھی कर जुदा भी हो सकता है। वली अन्नहु बिसबील मिन अन यस्तदीम निकाहहा औ युफारिकहा, इसलिए क्योंकि खावन ऐसे रास्ते पर है कि वो इस औरत के निकाह को दायम भी रख सकता है औ युफारिकहा या इस औरत से जुदा भी हो सकता है। फयमलिकु इकामतहा मकाम नफ्सिही, लिहाजा खावन इस बात का भी मालिक होगा कि वो इस औरत को अपना कायम मकाम कर दे। फी हक हाजल हुक्म, इस हुक्म के हक में। कौन सा हुक्म? कि वो निकाह को दायम भी रख सकता है और औरत से जुदाई भी इख्तियार कर सकता है। तो जब खावंद खुद इसका मालिक है तो बीवी को भी इसका मालिक बना सकता है कि वो चाहे तो निकाह को दायम रखे और चाहे तो निकाह को तोड़ दे, जुदाई इख्तियार कर ले। तो कहते हैं फयम लिखो इकामतहा मकाम नफसी ही, तो खावन इस बात का भी मालिक होगा कि वो अपनी जात का कायम मकाम उस औरत को कर दे। फी हक हादल हुक्म, इस हुक्म के हक में, यानी ये दायम रखने या जुदाई के हुक्म में। सुम मलवा के ओबिहा बाइन, फिर इसके जरिए जो तलाक वाक होगी वो बाइन होगी। खावन ने कहा इख्तारी और औरत ने क्या कहा इख्तर तो नफसी, इससे कौन सी तलाक होगी? तलाक बाइन। अब उसकी वजह भी बतलाएंगे। वजह यह क्योंकि औरत ने कहा है इख्तर तो नफसी, मैंने अपने नफ्स को इख्तियार कर लिया। मालूम हुआ औरत ने अपने नफ्स को अपने लिए खास कर लिया। पहले औरत का नफ्स अपने लिए खास नहीं था, खावन को भी उस पर मिलकर निकाह हासिल थी, खावन भी जब चाहता उसे सोहबत कर सकता था। तो पहले औरत की जात उसके साथ खास नहीं थी, खावन भी सोहबत का मालिक था भाई। लेकिन जब औरत ने कहा इख्तर तू नफसी, मैंने अपने नफ्स को इख्तियार कर लिया, मालूम हुआ वो अपने नफ्स को अपने साथ खास कर रही है और अपने साथ खास होने की यही सूरत है कि खावन से जुदा हो जाए, यानी तलाके बाइन आ जाए। कौन सी बाइन? तलाक आ जाए, तलाके बाइन। उसमें फिर औरत अपने नफ्स की मालिक बन गई, खावन अब रुजू वगैरह नहीं कर सकता। तो कहते हैं सुम मलवा के ओ बिहा बाइन, फिर इसके जरिए तलाक बाइन वाक होगी। लिअन्न इख्तियारहा नफ्सहा बिसुबूत इख्तिसासिहा बिहा, लिअन्न इख्तियारहा नफ्सहा, इसलिए क्योंकि औरत का अपने नफ्स को इख्तियार करना, औरत का अपनी जात को इख्तियार करना, बिसुबूत इख्तिसासिहा बिहा, वो इस नफ्स के औरत के साथ खास होने से ही साबित होगा। औरत का अपने नफ्स को इख्तियार करना यह कब साबित होगा? जब औरत का नफ्स औरत के साथ ही खास हो जाए, औरत की जात औरत के साथ ही खास हो जाए। अब हम कहेंगे कि ये इसने क्या किया है, अपने अपने जात को इख्तियार कर लिया है, इसकी जात इसी के साथ खास हो गई है, अब खावन का इस पर कोई हक बाकी नहीं है। तो कहते हैं लिया नख्तिया रहा नफसहा, इसलिए क्योंकि औरत का अपनी जात को इख्तियार करना भी सबूत इख्तिसासिहा बिहा, वो ये साबित करने से होगा कि इसके जात उसी के साथ खास हो। वजालिका फिल बाइनी, और ये किस में होता है? तलाके बाइन में होता है कि औरत की जात औरत के साथ खास हो जाती है, खावंद रुजू वगैरह नहीं कर सकता। वला यकून सलासन, हां इसके जरिए तीन तलाकें नहीं हो सकती। खावंद ने क्या कहा? इख्तारी, औरत ने कहा इख्तर तो नफसी, तो तीन तलाकों की नीयत करे भी तो भी तीन तलाकें नहीं होंगी। तो कहते हैं वला यकून सलासन, और तीं तलाकें नहीं होंगी। व इन नवज ज़ौज ज़ालिका, अगरचे खावंद इसकी नीयत भी कर ले। लियान अल इख्तियार ला यतनव्वउ, इसलिए क्योंकि इख्तियार मुतनव्वउ नहीं, इख्तियार की अकसाम नहीं होती। इख्तियार में तो इख्तियार किया है या इख्तियार नहीं किया, इसमें अनवा नहीं, जबकि बैनूनत के अंदर वहां अकसाम थी, एक बैनूनत खफीफा थी एक बैनूनत गलीजा थी, तो वहां पर जो है तीन की नीयत से बैनूनत गलीजा साबित हो जाती थी। तो कहते हैं लियान नल इख्तियार अला या तनव्वउ, इसलिए क्योंकि जो इख्तियार है उसमें तनव्वउ नहीं है, उसमें अकसाम नहीं है। बिखिलाफिल इबानति, बखिलाफ जुदा करने के लिए। अन अल बैनूनत कत तनव्वउ, क्योंकि बैनूनत जो है वो मुतनव्वउ है, उसमें अनवाअ हैं। आगे देखिए قال ولا بد من ذكر النفس في كلامه او في كلامها, जी याद रखना, खावंद ने कहा इख्तारी और औरत ने कहा इख्तर तो इससे तलाक वाकई नहीं होगी। खावंद ने क्या कहा? इख्तारी। औरत ने क्या कहा? इख्तर तू। बल्कि यहां नफ्स का लफ्ज मिलाना जरूरी है या इख्तियारतन मस्तर का मिलाना जरूरी है या तलाक का लफ्ज मिलाना जरूरी है या खुद इस इख्तारी के अंदर तकरार जरूरी है। भाई इस इख्तारी को हम तलाक से किनाया बना रहे हैं, तवज्जो है, लिहाजा या तो जरूरी है कि खावन नफ्स का लफ्ज जिक्र करे या दोनों जिक्र करें या बीवी जिक्र करे, एक जगह नफ्स का लफ्ज जरूर होना चाहिए या इख्तियारतन मस्दर जरूर होना चाहिए या तत्लीक का तलाक का लफ्ज जरूर होना चाहिए या इसी इख्तारी में तकरार जरूरी है, तकरार जरूरी है। भाई अब उसको बयान कर रहे हैं, कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला बुद्ध मिन जिक्र नफ्स फी कलामी ही औफी कलामी हा, और नफ्स के लफ्ज को जिक्र करना खावन के कलाम में औफी कलामी हा या बीवी के कलाम में जरूरी है। हत्ता लौ काल लहा इख्तारी, यहां तक कि अगर खावन ने बीवी से कहा इख्तारी, फकालत कद इख्तरतु, और औरत ने कहा कद इख्तरतु, देखो नफ्स का लफ्ज या मसदर या ततलीकतुन या तकरार कोई भी चीज यहां नहीं पाई जा रही, तो लिहाजा ये कौल बातिल होगा, इससे तलाक वाकई नहीं होगी। खावन ने क्या कहा इख्तारी, औरत ने क्या कहा कद इख्तरतु, तो इससे तलाक वाकई नहीं होगी, अगरचे खावन नीयत भी कर रहा है फिर भी नहीं वाकई होगी, क्योंकि नफ्स का लफ्ज जिक्र करना जरूरी था या मसदर का जिक्र करना जरूरी था या इख्तारी के अंदर तकरार जरूरी था। भाई तो कहते हैं हत्ता लौ काल लहा इख्तारी, यहां तक कि खावन ने अगर बीवी से कहा इख्तारी, देखो नफ्स का लफ्ज जिक्र नहीं किया, और फकालत औरत कहती है कद इख्तरतु, तहकीक मैंने इख्तियार कर लिया, इसने भी नफ्स का लफ्ज जिक्र नहीं किया, फहुआ बातिलुन, तो ये बातिल है, लिअन्नहु उरिफा बिल इजमाई। इधर देखिए ये जो इख्तियार लफ्ज के जरिए तलाक वाकई होती है ये इजमाए सहाबा से खिलाफुल कियास तरीके पर हमने जाना है। कियास तो यह तकाजा करता है इख्तियार लफ्ज से खावंद खुद तलाक नहीं दे सकता तो दूसरे को भी तलाक का मालिक नहीं बना सकता, लेकिन इजमाए सहाबा से मालूम हुआ कि इससे तलाक हो जाती है, तो यह बात इजमाए सहाबा से मालूम हुई है खिलाफुल कियास तौर पर, और जो चीज खिलाफुल कियास हो वह अपने मौरिद पर बंद रहती है, और सहाबा से जो इजमा है उसके अंदर नफ्स का लफ्ज जरूरी है भाई, लिहाजा बगैर नफ्स के लफ्ज की यह तलाक वाकई नहीं होगी। तो कहते हैं लिअन्नहु उरिफ बिल इजमाई, इसलिए क्योंकि इख्तियार के लफ्ज से तलाक का वाकई होना इसको इजमा के जरिए जाना गया है, वह हुआ फिल मुफस्सर मिन अहदिल जानिबैनी, और यह उस सूरत में होगा जब इख्तियार मुफस्सर हो मिन अहदिल जानिबैनी, दोनों जानिब में से किसी एक में, कि किस चीज का इख्तियार दे रहा है या किस चीज को वो इख्तियार कर रही है, तो उसको वो मुफस्सर होना चाहिए, उसकी तफसीर आनी चाहिए कि खावंद कहे इख्तारी नफसी की या बीवी कहे इख्तरतु नफसी, तवज्जो है, तो एक में इस इख्तियार की तफसीर जरूर चाहिए, और जब दोनों तफसीर जिक्र नहीं करेंगे तो फिर तलाक वाकई नहीं होगी। तो कहते हैं लिअन्नहु उरिफा बिल इजमाई, इसलिए क्योंकि इख्तियार के लफ्ज से तलाक का वाकई होना इसको इजमा के जरिए जाना गया है, यानी खिलाफुल कियास तरीके पर, वह हुआ फिल मुफस्सर मिन अहदिल जानिबैनी, और ये इस लफ्ज के जरिए तलाक का वाकई होना उस इख्तियार में है अल मुफस्सरी, जिसकी तफसीर की गई हो, यानी नफ्स के लफ्ज के साथ, मिन अहदिल जानिबैनी, दोनों जानिब में से किसी एक तरफ से, यानी मियां या बीवी की तरफ से। वली अन्नल मुबहमा ला यसलुहु तफसीरन लिल मुबहमी, और इसलिए क्योंकि मुबहम वो सलाहियत नहीं रखता कि वो तफसीर बन जाए मुबहम के लिए। भाई खावन ने कहा इख्तारी, कोई तफसीर नहीं की कि किस चीज का इख्तियार दे रहा है, और बीवी ने भी कहा कद इख्तार तू, उसने भी कोई तफसीर नहीं की, तो खावन का कलाम भी मुबहम, बीवी का कलाम भी मुबहम, और मुबहम मुबहम की तफसीर नहीं कर सकता भाई, क्योंकि वह तो खुद मुबहम है, दूसरे की क्या तफसीर करेगा। तो कहते हैं वली अन्नल मुबहम ला यसलुहु तफसीरन लिल मुबहमी, इसलिए क्योंकि जो चीज मुबहम होती है वो सलाहियत नहीं रखती कि वो मुबहम की तफसीर बने। वला तायुन माल इबहाम, और इबहाम के साथ तो तायीन नहीं हो सकती। खावन ने कहा इख्तारी और बीवी ने कहा कद इख्तरतु, दोनों मुबहम हैं और इबहाम के साथ तो तायीन नहीं हो सकती, हालांकि यहां तो तायीन जरूरी थी कि किस चीज का इख्तियार दे रहा है या किस चीज को इख्तियार कर रही है भाई, तो बगैर तायुन के तो तलाक नहीं हो सकती क्योंकि ये किनाया है भाई। तो कहते हैं वला तायुन माल इबहामी, और इबहाम के साथ तो तायुन नहीं हो सकता यानी तलाक का। वलौ काल अख्तारी नफ्सा की, और अगर खावन ने कहा इख्तारी नफ्सा की, तू अपनी जात को इख्तियार कर ले, फकालत इख्तर तू, औरत ने इख्तर तू कहा, उसने नफ्स के लफ्ज को जिक्र नहीं किया, तो भी तकउ वाहिदतुन बाइनतुन, एक तलाके बाइन वाक हो जाएगी, लिअन्न कलामहु मुफस्सरुन, क्योंकि खावन का कलाम मुफस्सर है, उसमें तफसीर यानी नफ्स का लफ्ज आ रहा है, वह कलाम मुहा खरज जवाबन लहू, और औरत का कलाम जो है वो इसके लिए बतौर जवाब के निकला है, फयतजम मनु इआदतहू, तो लिहाजा औरत का कलाम जो है वो खावन के कलाम के इआदे को मुतजमिन है। भाई याद रखो, जवाब जो है वो सवाल के मुताबिक होता है, जवाब सवाल के मुताबिक होता है, जवाब के अंदर चाहे सवाल वाली पूरी बात जिक्र की जाए या ना की जाए, लेकिन उसको इआदा ही समझा जाता है। मसलन आपने किसी से पूछा क्या जैद आ गया है, उसने कहा जी हां, तो ये जो जवाब है ये मुतजमिन है सवाल की इबारत को भी, यानी कहने वाले ने तो सिर्फ जवाब में जी हां कहा है, लेकिन हकीकत में पूरा कलाम गोया उसने यूं कहा जी हां जैद आ गया है, लेकिन चूंकि जैद आ गया है यह बात सवाल में भी जिक्र थी, इसलिए उसने इसको जिक्र नहीं किया। तो जवाब जो है वो सवाल के मुताबिक होता है, वो सवाल के बात को मुतजमिन होता है, उसके जिमन में वो बात आ जाती है। तो यहां भी खावन ने क्या कहा, इख्तारी नफ्स की, और औरत ने सिर्फ इख्तरतू कहा, तो ये इख्तरतू के अंदर तो नफ्स का लफ्ज नहीं जिक्र, लेकिन ये जवाब है, और जवाब सवाल के मुताबिक होता है, और वहां तफसीर आ गई थी, तो ये भी मुतजमिन है खावंद के कलाम को, यानी इसमें भी यूं समझो तफसीर आ गई है। तो कहते हैं लिअन्न कलामहु मुफस्सरुन, क्योंकि खावन का कलाम मुफस्सर है, यानी उसमें तफसीर की गई है नफ्स के लफ्ज के साथ, वह कलामुहा खरज जवाबन लहू, और औरत का कलाम जो है वो तो खावन के जवाब के तौर पर निकला है, फयतज़म्मनु इआदतहू, तो औरत का कलाम उस खावन के कलाम के इआदे को यानी उसके लौटाने को मुतजमिन है, कि गोया वो सारा इसके अंदर लौटा रही है भाई, अगरचे लफ्जों से जिक्र नहीं किया लेकिन ज़िमनन मौजूद है। वकदा लव काल अख्तार इख्तियारतन फकालत इख्तरतू, और इसी तरह है मसला, अगर खामन ने कहा इख्तार इख्तियारतन, इख्तार इख्तियारतन, तो अब इख्तियारतन मस्तर को साथ जिक्र कर दिया, नफ्स का लफ्ज जिक्र नहीं किया, कहते हैं इस सूरत में भी तलाक हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इख्तियारतन मस्तर है और इसके साथ गोलता जुड़ी हुई है, और मस्तर के साथ गोलता वहदत के लिए अमूमन जोड़ी जाती है, जैसे जरबा यज़रिबु ज़रबन, और अगर आप एक ज़र्ब बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे ज़रबतुन, दो बतलाना चाहते हैं तो ज़रबतैनी या ज़रबतानी। तो लिहाजा यहां इख्तार इख्तियारतन, यहां खावन ने इख्तियार मस्तर को साथ जोड़ दिया, और इख्तियार मस्तर के साथ ता मिली हुई है वहदत वाली ता भाई, और वहदत वाली ता ये दलालत कर रही है कि खावन तलाक का इख्तियार दे रहा है। भाई वहदत वली ता से तलाक के इख्तियार का कैसे पता चला, कहते हैं देखो जब किसी चीज का इख्तियार दिया जाता है किसी को तो वहां तअद्दुद की जरूरत नहीं होती। आप बीवी से कहते हैं ये कपड़ा ले लो या ये वाला कपड़ा ले लो, तो इख्तारी देखो एक ही दफा इख्तियार देना काफी है, और या आप बीवी से कहते हैं जितने कपड़े पड़े हैं जितने लेना चाहते हो तुम्हें इख्तियार है, तो इख्तारी तो इख्तियार कर ले, तो यहां तअद्दुद की जरूरत नहीं। लेकिन तलाक के अंदर इख्तियार में कभी तअद्दुद आता है, कभी खावन एक तलाक का इख्तियार देता है, कभी दो तलाकों का इख्तियार देता है, कभी तीन तलाकों का इख्तियार देता है बीवी को, तो वो इख्तियार जो तलाक के लिए दिया जाए उसमें वहदत और तअद्दुद का इहतमाल है, बाकी इख्तियारों में तअद्दुद का इहतमाल नहीं है भाई। तो इख्तियारतन के अंदर यह ता वहदत वाली आ गई, मालूम हुआ ऐसा इख्तियार मुराद है जिसमें वहदत और तअद्दुद हो सके। अब यहां पर वहदत मुराद है लेकिन ऐसा इख्तियार है जिसमें वहदत के साथ साथ तअद्दुद भी हो सकता है, और वो तो तलाक वाला इख्तियार होता है कि खावन कभी एक तलाक का इख्तियार देता है, कभी दो तलाक का और कभी तीन तलाक का भाई। तो ये इख्तियारतन की गोल ताने बतलाया। तो कहते हैं वकदा लवकाल अख्तार इख्तियारतन, और इसी तरह अगर खावन ने बीवी से कहा इख्तार इख्तियारतन फकालत इख्तर तू, तो औरत ने कहा इख्तर तू, तो एक तलाक बाइन हो जाएगी। लिअन्न अल्हा अफिल इख्तियारती, इसलिए क्योंकि इख्तियारा के अंदर जो हा है یعنی گول تا جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے. تو کہتے ہیں اختیارتن کے اندر یہ جو ہا ہے تم بھی او عنی الاتحاد والانفراد امبا یوم بھی او کے معنی خبر دینا. آپ کی کتاب میں تم بھی او کس طرح لکھا ہے؟ تا نون با یا اور حمزہ. حمزہ یا کے اوپر ہے یا سے آگے الگ ہے؟ اوپر ہے, ہاں اوپر ہی ہونی چاہیے. میری کتاب میں یا کے بعد حمزہ ہے, یہ درست نہیں ہے بھائی, یہ درست نہیں. کیونکہ حمزہ جو ہے, میں نے بتایا حمزہ کبھی الف کی صورت میں حمزہ کو لکھتے ہیں, کبھی واو کی صورت میں, اور کبھی یا کی صورت میں. تو یہاں پر یہ جو یا ہے یہ یا نہیں ہے, یہ حمزہ ہی ہے لیکن یا کی شکل میں لکھی گئی ہے, لہذا اس کے اوپر حمزہ ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَاءَ فِي الْإِخْتِيَارَةِ, اس لیے کیونکہ اختیارہ لفظ کے اندر جو یہ ہا ہے یعنی گول تا جو ہے, تم بھی عن الاتحاد والانفرادی. اتحاد و انفراد کا ایک معنی ہے, اتحاد وحدت سے ہے ایک ہونا, اور انفراد منفرد ہونا یعنی ایک ہونا. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَاءَ فِي الْإِخْتِيَارَةِ, اس لیے کیونکہ اختیارہ لفظ کے اندر یہ جو گول تا ہے تم بھی او عن الاتحاد والانفرادی, یہ ایک ہونے کی خبر دیتی ہے, اس سے اختیار کے ایک ہونے کا پتہ چل رہا ہے. واختیارها نفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد اخرى, اور عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا, واختیارها نفسها, اور عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا, هو الذي, یہی وہ چیز ہے, یتحد مرتن و یتعدد اخرى, جو کبھی متحد ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے اور کبھی اس میں تعدد ہوتا ہے. عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا, اسی میں کبھی وحدت ہوتی ہے اور کبھی تعدد ہوتا ہے. اگر خاوند نے ایک طلاق کا اختیار دیا ہے تو وحدت ہے, دو کا یا تین کا اختیار دیا ہے تو اس میں تعدد ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ اختیارها نفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد اخرى, اس لیے کیونکہ عورت کا اپنی ذات کو اختیار کرنا یہی وہ چیز ہے جو کبھی اس میں وحدت ہوتی ہے اور کبھی اس میں تعدد ہوتا ہے. فصار مفسرا من جانبه, تو یہ اختیار بھی مفسر ہو گیا من جانبه, خاوند کی جانب سے, کہ اس نے اختیارتن لفظ کو ذکر کر دیا. تو معلوم ہوا عورت کا اپنے نفس کو اختیار کرنا اس میں کبھی وحدت ہوتی ہے اور کبھی تعدد ہوتا ہے, لیکن اور چیزوں کے اختیار میں تعدد کی حاجت نہیں, وہاں تعدد نہیں ہوتا. نیز عورت کا اپنے خاوند کو اختیار کرنا اس میں بھی تعدد نہیں ہے, اس میں بھی تعدد نہیں ہے کہ ایک دفعہ اختیار کرتی ہے یا دو دفعہ یا تین دفعہ, نہیں بھائی. وہاں طلاقیں تو ایک دو تین ہیں, ان کا اختیار خاوند دے گا, تو وہ اپنے نفس کو اختیار کرنا اس میں تو تعدد ہے, لیکن خاوند کو اختیار کرنا اس میں تو تعدد نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ جو اختیار دیا اختاری اختیارتن کے ساتھ, یہ طلاق ہی کا اختیار ہے. آگے دیکھیے, ولو قال اختاری فقالت اخترت نفسی, اگر خاوند نے اختاری کہا, فقالت, عورت کہتی ہے اخترت نفسی, میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا. تو اب دیکھو ایک میں تفسیر آ گئی, عورت کے کلام میں کیا آ گئی؟ تفسیر آ گئی. تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی بشرطے کہ خاوند نے نیت کی ہو بھائی. تو کہتے ہیں ولو قال اختاری, اگر خاوند نے کہا اختیار کر لے, فقالت اخترت نفسی, تو عورت کہتی ہے میں نے اپنی ذات کو اختیار کر لیا, یقع الطلاق, طلاق واقع ہو جائے گی, اذا نوى الزوج, جب خاوند نے نیت کی ہو. اگر خاوند نے نیت نہیں کی طلاق کی, پھر وہ اخترت نفسی کہے بھی تو بھی طلاق واقع نہیں, کیونکہ یہ کنایا ہے, کنایہ کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے بھائی. لِأَنَّ كَلَامَهَا مُفَسَّرٌ, اس لیے کیونکہ عورت کا جو کلام ہے وہ مفسر ہے, اس کے اندر نفس کا لفظ موجود ہے. وَمَا نَوَاهُ الزَّوْجُ مِن مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ, اور وہ جس کی خاوند نے نیت کی ہے وہ اس کے کلام کے محتملات میں سے ہے. خاوند نے کیا کہا ہے؟ اختاری, اور اختاری کے اندر طلاق کی نیت بھی ہو سکتی ہے اور غیر طلاق کی نیت بھی, تو معلوم ہو اختاری میں طلاق کا بھی احتمال ہے. تو خاوند ایسی چیز کی نیت کرتا ہے جس کا کلام میں احتمال بھی ہو, کلام میں احتمال بھی ہو تو وہ ثابت ہوگا, اگر احتمال ہی نہ ہو تو وہ ثابت بھی نہیں ہوگا. तो कहते हैं वमा नवाहु ज़ौजु, और वो जो खावंद ने नीयत की है यानी तलाक की, मिन मुहतमलाती कलामी ही, ये उसके कलाम के मुहतमलात में से है यानी उसके कलाम में इसका एहतमाल है, और कलाम के अंदर अब एक चीज का एहतमाल भी हो और खावंद उसकी नीयत भी कर ले तो वो साबित हो जाएगा और औरत को इख्तियार मिल जाएगा। फिर जब उसने इख्तर तो नफसी कहा तो उसको तलाक हो जाएगी भाई। वलव काल अख्तारी फकालत अना अख्तारु नफसी फहिया तालिकुन, सूरत मसला ये, खावंद ने कहा इख्तारी तो इख्तियार कर ले, औरत जवाब में कहती है अना अख्तारु नफसी, पहले माजी के सीगे इस्तेमाल हो रहे थे, इख्तर तो नफसी, मैंने अपने नफ्स को इख्तियार कर लिया, लेकिन अब अगर वो मुजारे का सीगा इस्तेमाल करती है तो फिर क्या इससे भी तलाक हो जाएगी या नहीं? तो याद रखो मुजारे के अंदर तो दो एहतमाल हैं, हाल का भी एहतमाल, अख्तार उ नफसी, मैं अपने नफ्स को इख्तियार करती हूं, और इसमें मुस्तकबिल का भी एहतमाल है, अख्तार उ नफसी, मैं अपने नफ्स को इख्तियार करूंगी, यानी सिर्फ वादा कर रही है, क्या कर रही है, मुस्तकबिल की बात है ना, अख्तार उ नफसी, मैं अपने नफ्स को इख्तियार करूंगी, गोया सिर्फ वादा कर रही है, अपने नफ्स को फिलहाल इख्तियार नहीं कर रही, तो लिहाजा मुजारे उसने इस्तेमाल किया, और मुजारे के अंदर तो हाल के साथ इस्तकबाल का भी इस्तेमाल होता है, लिहाजा कियास तो यह तकाजा करता है कि अना अख्तारु नफसी जो है इसके जरिए तलाक वाके नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात कतई नहीं है, इसमें हाल के साथ साथ इस्तकबाल के माना का भी इस्तेमाल है। तो कियास क्या तकाजा करता है कि अना अख्तारु नफसी यानी मुजारे के सिगे के साथ औरत को तलाक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अरबी के अंदर हाल के लिए कोई अलग सीगा है ही नहीं, इसलिए निकाह बै वगैरह जो भी करना है तो ईजाब और कबूल का माजी के सीगे होना जरूरी है, क्योंकि मुजारे के अंदर तो मुस्तकबिल का भी एहतमाल है, मुजारे का सीगा कोई बोलेगा तो पता नहीं चलेगा कि यह इसका इरादा फिलहाल का है या मुस्तकबिल का इरादा वो कर रहा है, तवज्जो है, इसीलिए तमाम उकूद के अंदर क्या जरूरी कि ईजाब और कबूल माजी के सिगे होने चाहिए। तो यहां अगर औरत ने मुजारे का सिगा इस्तेमाल किया तो कहते हैं इस सूरत में भी तलाक हो जाएगी, कियास तो यह तकाजा करता है नहीं होनी चाहिए लेकिन तलाक हो जाएगी। कहते हैं वलव काल अख्तारी, और अगर खामन ने बीवी से कहा इख्तारी, फकालत अन अख्तारु नफसी, कि मैं अपनी जात को इख्तियार करती हूं, मुजारे के सिगे के साथ उसने यह कहा, फहिया तालिकुन, तो यह औरत तलाक वाली है, वल कियास अल्ला तो तल्लक, और कियास तो यह तकाजा करता है कि इस औरत को तलाक न हो, लिअन नहादा मुजर्रुदु वादिन, इसलिए क्योंकि यह तो सिर्फ एक वादा है, औ यहतमिलुहु, या यह वादे का एहतमाल रखता है, क्योंकि अगर सिर्फ मुस्तकबिल वाला माना करें तो वादा हो रहा है कि मैं ऐसा करूंगी, और अगर हाल वाला माना कर लें फिर भी मुस्तकबिल का तो इसमें फिर भी एहतमाल है भाई, बात समझ में आ गई, यह माना है वल कियास अल्ला तुतल्लक, और कियास यह है कि औरत को तलाक ना हो, लिअन्न हादा मुजर्रद वादिन औ यहतमिलुहु, इसलिए क्योंकि यह मुजारे के सीगे के जरिए तो या तो सिर्फ वादा है औ यहतमिलुहु, या वो इस वादे का इहतमाल रखता है, फसार कमा इदा काल अलहा, तो ये इसी तरह हो गया जब खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी नफसा की, तो अपने आप को तलाक दे दे, फकालत औरत ने कहा अना उतल्लिकु नफसी, अना उतल्लिकु नफसी, मुजारे का सीगा इस्तेमाल कर लिया, तो याद रखो इस सूरत में तलाक वाकई नहीं होगी, मुजारे के सीगे के साथ तलाक वाकई नहीं होगी। तो जब अना उतल्लिकु नफसी इसके अंदर तलाक वाकई नहीं हो रही तो अना अख्तारु नफसी इसके अंदर भी तलाक वाकई नहीं होनी चाहिए, कियास ये तकाजा करता है, लेकिन इस्तेहसानन तलाक वाकई हो जाएगी। कहते हैं वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की वजह जो है हदीस आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, फइन्नहा कालत, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया ला बल अख्तारुल्लाह व रसूलहु, मैं अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करती हूं, अख्तार, देखो मुजारे का सीगा इस्तेमाल किया, वह तबरहुन नबी अलैहिस्सलाम जवाब मिन्हा, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी इसको उनकी तरफ से जवाब एतबार किया, उनकी तरफ से इसको जवाब शुमार किया, क्या किया, जवाब शुमार किया, بھئی واقعہ یوں ہوا کہ ایک موقع پر غزوات سے مسلمانوں کو کچھ مال و دولت حاصل ہوئی تو ازواج مطہرات نے بھی حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. حضور علیہ السلام کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی, آپ ان سے ناراض ہوئے اور اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم نازل ہو گیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک, اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کی خواہش ہے, اس کا تم ارادہ کرتی ہو, فتعالین, تو آ جاؤ, امتعکن, میں تمہیں کچھ فائدہ دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, یعنی کچھ دنیاوی مال و دولت دے کر تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کرتی ہو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کے گھر کا ارادہ کرتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ نے تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا, ازواج مطہرات نے نفقے میں اضافے کی درخواست کی تھی اور حضور علیہ السلام کو بھی ان کے اس مطالبے سے تکلیف ہوئی, آپ ناراض ہوئے اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا. تو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے عائشہ, میں تمہیں ایک بات ذکر کرتا ہوں, لیکن جلدی نہ کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. اور پھر اس کے بعد یہ آیت حضور نے ان کے سامنے ذکر فرمائی, تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں میں یا رسول اللہ آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی, میں اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے والدین کے ساتھ مشورے کا اس لیے کہا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ وہ مجھے کبھی بھی حضور سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی, میں اللہ کو اور آپ کو اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں. اور اسی طرح دیگر ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا. تو اس واقعے میں حضرت عائشہ کی وہ بات ذکر ہو رہی ہے, فَإِنَّهَا قَالَتْ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا بل اختار اللہ ورسولہ, نہیں بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں, وَاعْتَبَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَوَابًا مِنْهَا, اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کو ان کی طرف سے جواب شمار کیا, اگرچہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا انہوں نے لیکن حضور نے اس کو جواب شمار فرمایا. تو جیسے اس حدیث کے اندر مضارے کے صیغے کو جواب شمار کیا گیا, اسی طرح عورت نے یہ جو کہا انا اختار و نفسی, یہاں پر بھی مضارے کو جواب شمار کیا جائے گا. اچھا, یہ تو تھی عقلی دلیل اور اس کو بھی استحسان قرار دیا کیونکہ یہاں پر بھی اس کے مقابلے میں قیاس موجود ہے. بھائی ولی ان هذه الصيغه حقيقه في الحال وتجاوز في الاستقبال, اور اس لیے کیونکہ یہ صیغہ جو ہے یعنی مضارے کا جو صیغہ ہے حقیقت فی الحال, یہ حال میں حقیقت ہے, وتجوز فی الاستقبالی, اور استقبال میں مجاز ہے. یاد رکھو فعل مضارے کے بارے میں علماء نحو کے تین مذاہب ہیں. بعض علماء نحو فرماتے ہیں کہ یہ فعل مضارے حال اور مستقبل دونوں میں مشترک ہے, یعنی یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں, جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حال جو ہے یہ مضارے کا حقیقی معنی ہے اور مستقبل جو ہے وہ مضارے کا مجازی معنی ہے, اور جبکہ بعض علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ حال جو ہے یہ مجازی معنی ہے اور مستقبل وہ مضارے کا حقیقی معنی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ فعل مضارے کا حقیقی معنی حال ہے اور مستقبل مجاز ہے, جیسے کہ صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں ولی ان هذه الصيغه حقيقه في الحال وتجوز في الاستقبال, اس لیے کیونکہ یہ مضارع کا جو صیغہ ہے یہ حال کے اندر تو حقیقت ہے, وتجوز في الاستقبال, اور استقبال میں مجاز ہے, كما في كلمه الشهاده واداء الشهاده, جیسے کلمہ شہادت میں ہے اور اداء شہادت میں ہے. یاد رکھو عربی زبان میں کلمہ کلام کو کہتے ہیں, علماء نحو کے نزدیک تو کلمہ بامانہ لفظ کو کہتے ہیں, کلمہ بامانہ لفظ, لیکن عربی زبان میں کلمہ कलाम को कहते हैं भाई, जैसे कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो देखो ये कलाम है लेकिन इसको क्या कहते हैं, कलिमा शहादत। तो साहिब हिदाया की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि ये मुजारे का सीगा हाल के अंदर हकीकत है और मुस्तकबिल में मजाज है। जैसे कि आप देखते हैं कलिमा शहादत जो है, कलिमा शहादत अशहदु, देखो फेले मुजारे है लेकिन इसका एतबार किया जाता है, कोई ये कलिमा शहादत कह दे तो मुसलमान शुमार होता है। इसी तरह काजी के पास जाकर कोई गवाही देता है तो वो भी गवाही देते हुए क्या कहता है, अशहदु, मैं गवाही देता हूं, तो वहां भी देखो फेले मुजारे इस्तेमाल कर रहा है, मालूम हो फेले मुजारे हाल के अंदर हकीकत है भाई। तो जैसे वहां पर कलिमा शहादत और अदाए शहादत में उसको हाल पर महमूल किया जाता है क्योंकि उसका हकीकी माना है, तो यहां भी अना अख्तारु नफ्सी के अंदर इसको हाल पर महमूल किया जाएगा। तो कहते हैं कमाफी कलिमती शहादती, जैसे कलिमा शहादत के अंदर है वह अदाई शहादती, और जैसे अदाए शहादत के अंदर है बिखिलाफ कौलिहा उतल्लिकु नफ्सी, बखिलाफ औरत के कौल उतल्लिकु नफ्सी के। हां उतल्लिकु नफ्सी अगर औरत कहेगी इससे तलाक वाकई नहीं होगी, वजह यह कि यह मुतारफ नहीं है, तलाक देने के लिए लोगों में यह लफ्ज राइज नहीं है बल्कि माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, तल्लक्तु नफ्सी। तो कहते हैं बिखिलाफ कौलिहा उतल्लिकु नफ्सी, बखिलाफ औरत के कौल उतल्लिकु नफ्सी, लिअन्नहु तअज़्ज़रा हमलुहु अलल हाल, इसलिए क्योंकि उसको हाल पर महमूल करना मुतअज़्ज़िर है, मुमकिन नहीं है। तो कहते हैं उतल्लिकु नफ्सी, इसको हाल पर हम महमूल नहीं कर सकते, हाल पर इसको महमूल करना मुमकिन नहीं है। वजह यह कि जो हाल का सीगा होता है यह खबर देने के लिए वजह है। हाल का सीगा किस लिए वजह है, खबर देने के लिए। मसलन आप कहते हैं आज़रिबु ज़ैदन, मैं ज़ैद की पिटाई कर रहा हूं, तो देखो ये आप खबर दे रहे हैं किसी को, या आप किसी से कहते हैं अदरुसु, मैं पढ़ रहा हूं, तो देखो ये मुजारे का सीगा किस लिए होता है, खबर के लिए वजह है। लेकिन यहां इस उतल्लिकु नफ्सी इसको हाल पर महमूल नहीं कर सकते क्योंकि हाल का सीगा खबर देने के लिए वजह होता है, और हर खबर के लिए कोई महकी अनहू चाहिए
जी।
हर खबर के लिए महकी अनहू चाहिए, जिससे आप हिकायत कर रहे हैं, जिसकी आप खबर दे रहे हैं। मसलन मैं किसी से कहता हूं ज़ैदुन यज़रिबु, ज़ैद पिटाई कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, खारिज में या ज़ैद क्या कर रहा है, पिटाई कर रहा है, तो तब मैं कहूंगा यज़रिबु ज़ैदुन। तो ये यज़रिबु ज़ैदुन ये लफ्ज़ है, ये हिकायत है, और इसके लिए महकी अनहु यानी जिससे हिकायत की गई, जिसके बारे में खबर दी गई, वो भी चाहिए भाई। लिहाजा ये जो उतल्लिकु नफ्सी है इसको हाल पर महमूल करना मुतअज़्ज़िर है, इसलिए क्योंकि इसके लिए कोई महकी अनहु नहीं है। जब इसके लिए महकी अनहु ही नहीं है तो इसको आप हाल पर कैसे महमूल कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, हाल के सीगे के जरिए खबर दी जाती है और उसके लिए हमेशा क्या चाहिए, महकी अनहु चाहिए। महकी अनहु होगा तो आपका खबर देना भी सही, महकी अनहु नहीं है तो आपका खबर देना भी सही नहीं। तो अना अख्तारु नफ्सी, इसके लिए तो महकी अनहु है, उतल्लिकु नफ्सी के लिए महकी अनहु नहीं भाई। किस तरह कहते हैं, इसलिए कि अना अख्तारु नफ्सी, मैं अपनी जात को इख्तियार करती हूं, ये लफ्ज उसने जुबान से कहे हैं
जी।
और इख्तियार किसके जरिए किया जाता है, जुबान से इख्तियार करते हैं या दिल से, इख्तियार तो दिल का फेल है, एक आदमी एक चीज को इख्तियार करता है या इख्तियार नहीं करता, तो मालूम हुआ दिल का इख्तियार करना वो हुआ महकी अनहु, और जुबान के जरिए उसकी खबर दी जा रही है
जी।
औरत ने कहा अना अख्तारु नफ्सी, मालूम हुआ ये अपने दिल की हालत की खबर दे रही है, दिल की जो हालत है वो है महकी अनहु, इख्तियार किसने किया है, दिल ने, और जुबान के जरिए वो इजहार कर रही है
जी।
उस दिल के फेल का इजहार कर रही है, तो ये तो था इख्तियार, इख्तियार दिल का फेल है और जुबान के जरिए उसका इजहार होता है, जबकि तलाक वो तो जुबान ही का फेल है
जी।
तलाक वो तो जुबान का फेल है, खावन दिल में सोचे मैंने तलाक दे दी, इससे तलाक नहीं होती, जुबान से कहेगा मैंने तलाक दे दी तो तब तलाक होगी। तवज्जो है, मालूम हुआ तलाक देना यह दिल का फेल नहीं है बल्कि जुबान का फेल है। तो लिहाजा उतल्लिकु नफ्सी, इसके लिए कोई महकी अनहु नहीं, इसके लिए कोई महकी अनहू नहीं है, और हाल के लिए तो महकी अनहू जरूर चाहिए होता है, लिहाजा इस उतल्लिकु नफसी को हाल पर महमूल नहीं कर सकते। क्या बात हुई, हासिल कलाम क्या कि हाल के लिए हमेशा क्या चाहिए, महकी अनहू, क्योंकि हाल के सीगे के जरिए खबर दी जाती है और खबर के लिए महकी अनहू चाहिए। महकी अनहू है तो यह खबर भी है, महकी अनहू नहीं तो खबर भी नहीं। तो अना अख्तारु नफ्सी, उसके अंदर इख्तियार का लफ्ज आ रहा है और इख्तियार तो दिल का फेल है, तो अख्तारु नफ्सी जब जुबान से कहा तो वो दिल का जो इख्तियार करना है वो हुआ महकी अनहू। तो अना अख्तारु नफ्सी के लिए तो महकी अनहू है, उसको तो हम हाल पर महमूल कर सकते हैं कि वो दिल की बात जुबान से बतला रही है, लेकिन तलाक ये तो जुबान ही का फेल है, इसके लिए कोई महकी अनहू अलग है ही नहीं, लिहाजा इसको हाल पर महमूल करना मुमकिन नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बिखिलाफ कौलिहा उतल्लिकु नफ्सी, बखिलाफ औरत के कौल उतल्लिकु नफ्सी के, लिअन्नहु तअज़्ज़रा हमलुहु अलल हाली, इसलिए क्योंकि उसको हाल पर महमूल करना मुतअज़्ज़िर है यानी मुमकिन नहीं है। लिअन्नहु लैसा बिहिकायतिन अन हालतिन क़ाइमतिन, हालतिन क़ाइमतिन ऐ हालतिन साबितातिन, लिअन्नहु लैसा बिहिकायतिन अन हालतिन क़ाइमतिन, इसलिए क्योंकि ये किसी साबित शुदा हालत से हिकायत नहीं है, क्योंकि उतल्लिकु नफ्सी किसी साबित शुदा हालत से हिकायत नहीं है, यानी इसके लिए महकी अनहू नहीं है भाई। वला कज़ालिका कौलुहा अना अख्तारु नफ्सी, जबकि औरत का कौल अना अख्तारु नफ्सी वो ऐसा नहीं है, लिअन्नहु हिकायतुन अन हालतिन क़ाइमतिन, इसलिए क्योंकि वो तो हिकायत है यानी वो तो खबर है, अन हालतिन क़ाइमतिन एक साबित शुदा हालत से, वह हुआ इख्तियारुहा नफ्सहा, और वो औरत का अपनी जात को इख्तियार करना है यानी दिल में, उसके बारे में वो खबर है, तो उसको तो हम हाल पर महमूल कर सकते हैं, लेकिन उतल्लिकु को हाल पर महमूल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उतल्लिकु जुबान का फेल है और ये हाल के जरिए खबर दी जाती है, तो उसके लिए महकी अनहू चाहिए होता है, और यहां उतल्लिकु के लिए कोई महकी अनहू नहीं है भाई। और नीज मैंने वजह जिक्र कर दी, क्योंकि यह मुतआरफ नहीं है, मुजारे के सिगे के साथ तलाक का वाक़े करना मुतआरफ नहीं है, अगर यह मुतआरफ होता फिर तलाक वाक़े हो जानी थी। वलौ क़ाल लहा इख्तारी 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 फ़क़ालत इख्तरतुल ऊला अविल वुस्ता अविल अखीरत तुल्लिक़त सलासन फी क़ौली अबी हनीफत रहमहुल्लाह वला यहताजु इला नियति ज़ौजी वक़ाला तुतल्लक़ु वाहिदतन। सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से कहा इख्तारी इख्तारी इख्तारी, तीन दफा इख्तियार का लफ्ज बोला। तो याद रखो मैंने बतलाया था कि और चीजों के अंदर जो इख्तियार होता है उसमें तअद्दुद नहीं होता, सिर्फ तलाक के अंदर तअद्दुद होता है कि खावन एक तलाक का इख्तियार दे रहा है या दो का या तीन का। लिहाजा यहां पर बेशक नफ्स का लफ्ज जिक्र नहीं है, लेकिन इख्तारी तो तीन दफा आ रहा है, और तीन दफा इख्तियार तो तलाक में हो सकता है और चीजों में तो नहीं हो सकता, लिहाजा इस यहां खावन की नीयत की भी हाजत नहीं है। और इससे औरत कहेगी इख्तर तू, तो इख्तर तू कहते ही तीनों तलाकें हो जाएंगी, क्योंकि खावन ने क्या कहा इख्तारी इख्तारी इख्तियारी, तीन तलाकों का उसको मालिक बना दिया, तीन तलाकों का उसको मालिक बना दिया। और जब वो कहेगी इख्तर तू, तो उसने खावन ने जिस चीज का मालिक बनाया था उसको उसने इख्तियार कर लिया, और खावन ने तो तीन तलाकों का मालिक बनाया था, लिहाजा तीन तलाकें वाकई हो गई। लेकिन अगर औरत कहती है, औरत कहती है इख्तर तुल ऊला, मैंने पहली वाली को इख्तियार कर लिया या पहले कलीमे को इख्तियार कर लिया, या कहती है इख्तर तुल वुस्ता, मैंने दरमियान वाले को इख्तियार कर लिया, या कहती है इख्तरतुल अखीरता, मैंने आखिर वाले को इख्तियार कर लिया, तो भी इमाम साहब फरमाते हैं तीनों तलाकें हो जाएंगी। ये जो अल उला अल वुस्ता अल अखीरा वगैरह जो सिफत जिक्र करेगी इसका कोई एतबार नहीं है, बस इख्तरतु पाया गया, और इख्तरतु से तीन होती थी तो यहां भी इख्तरतु से तीन हो जाएंगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं इस सूरत में एक तलाक वाकई होगी। मसला समझ में आया। वलौ क़ाल लहा इख्तार इख्तार इख्तारी, अगर खावन ने बीवी से कहा इख्तारी इख्तारी इख्तारी, फ़क़ालत औरत कहती है इख्तरतुल ऊला, मैंने पहली को इख्तियार कर लिया, अविल वुस्ता या मैंने दरमियान वाली को इख्तियार कर लिया, अविल अखीरता या मैंने आखिर वाली को इख्तियार कर लिया, तो लिकत सलासन फी कौली अबी हनीफत रहमतुल्लाह, तो उसको तीन तलाकें हो जाएंगी इमाम साहब के कौल में। वला यहताज इला नियति ज़ौजी, और खावन का यह कौल खावन की नीयत का भी मोहताज नहीं है, नीयत नह भी हो फिर भी इससे तलाक हो जाएगी। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं तुतल्लकु वाहिदतन, के सूरत में औरत को एक तलाक होगी। अब खावन की नीयत की क्यों नहीं जरूरत, मैंने बतला दिया, क्योंकि क्योंकि वो इख्तियार जो तलाक के बारे में हो उसमें तअद्दुद हो सकता है और किसी इख्तियार में तअद्दुद नहीं हो सकता। तो यहां खावन का तकरार के साथ इख्तियारी लाना यही बतला रहा है कि वो तलाक का इख्तियार दे रहा है, लिहाजा नीयत की हाजत नहीं। तो कहते हैं वह इन्नमा ला युहताजु इला नीयति ज़ौजी, और इसके अंदर खावन की नीयत की भी एहतियाज नहीं होगी। लिदलालती तकरारी अलैही, इसलिए क्योंकि तकरार जो है वो इस तलाक पर दलालत कर रही है। इदिल इख्तियार फी हक़ तलाकी, इसलिए क्योंकि वो इख्तियार जो तलाक के बारे में हो, हुवल्लज़ी यतकररु, उसी इख्तियार में तकरार होता है और किसी इख्तियार में तकरार नहीं होता। लहुमा, अब साहिबैन की दलील आ गई। साहिबैन फरमाते थे अगर उसने उला या वस्ता या अखीरा का लफ्ज जिक्र किया तो एक तलाक होगी। इमाम साहब फरमाते हैं तीनों हो जाएंगी। अब उस साहिबैन की दलील, वलहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अन्ना दिक्र अल उला वमा यजरी मजराहू, कि उला को जो औरत ने जिक्र किया या जो भी इसके कायम मकाम लफ्ज जिसको औरत ने जिक्र किया, इन काना ला युफीद मिन हैसु तरतीबी, अगरचे ये फायदा नहीं देता मिन हैसु तरतीबी, तरतीब के एतबार से औरत का कौल तरतीब का फायदा नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि यहां तरतीब है ही नहीं भाई, ये तरतीब का महल ही नहीं है। तरतीब होती है अफआल में, आप एक काम पहले करते हैं दूसरा बाद में करते हैं तीसरा बाद में करते हैं, तो तरतीब अफआल में होती है, मजमूए के अंदर तरतीब नहीं होती। मसलन एक कमरे के अंदर 10 आदमी बैठे हुए हैं तो आप ये नहीं कह सकते ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है, आप किसी को भी पहले दूसरे या तीसरे के साथ मौसूफ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो सारे जमा हैं कमरे में। और तरतीब अफ़ाल में होती है, मजमूए के अफराद में तरतीब नहीं होती। पहला दूसरा या तीसरा होना फेल के एतबार से हो सकता है, मसलन एक हो सकता है पहले आया हो, एक बाद में आया हो, एक तीसरे नंबर पर आया हो, तो आने में तो ये पहला दूसरा तीसरा हो सकते हैं, लेकिन खुद मजमूए के अंदर जमा होने के एतबार से इनमें तरतीब नहीं है भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ औरत का ऊला वस्ता और अखीरा ये तरतीब का फायदा तो नहीं देगा, तरतीब का फायदा नहीं देगा। तरतीब का फायदा तो कहते हैं नहीं देगा, लेकिन इफराद का फायदा देगा। खावन ने बीवी को तीन तलाकों का मालिक बनाया है, उनमें से कोई भी पहली दूसरी या तीसरी नहीं है, बस तीनों औरत की मिल्क में जमा हो गई। अब जब उसने ऊला कहा तो ऊला तो इनमें से कोई भी नहीं है, हां तो ऊला ने तरतीब का फायदा तो नहीं दिया लेकिन एक होने का तो फायदा दिया। मालूम हो एक ही नीयत है औरत की, तरतीब का तो फायदा नहीं लेकिन इफराद का फायदा दिया। इसी तरह अगर वस्ता कहा, इसने भी तरतीब का फायदा नहीं दिया क्योंकि वस्ता कोई है ही नहीं, हां लेकिन वस्ता से इतना पता चल गया एक मुराद है औरत की, तो तरतीब का तो फायदा नहीं होगा लेकिन इफराद का फायदा होगा और एक तलाक होगी। बात समझ में आ गई, यह साहिबैन की दलील थी। लहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि नज़िक्र अल ऊला वमा यजरी मजराहू, के ऊला का जिक्र करना या जो भी लफ्ज इसके कायम मकाम है उसको जिक्र करना, इन काना ला युफीद मिन हैसु तरतीबी, अगरचे ये तरतीब के एतबार से तो फायदा नहीं देता क्योंकि ये तो महल्ले तरतीब ही नहीं है। वलाकिन युफीद मिन हैसुल इफरादी, लेकिन ये मुफरद होने के एतबार से फायदा देगा। फयुअतबरु फीमा युफीदु, लिहाजा ये मोतबर होगा उस चीज में जिसका ये फायदा दे रहा है, लिहाजा एक तलाक होगी। वलहू, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहादा वस्फुन लगवुन, कि यह वसफ लगव है, इसका कोई एतबार नहीं है। लिअन्नल मुजतमिअ फिल मिल्की ला तरतीब फीही, इसलिए क्योंकि वो तलाकें जो औरत की मिल्कियत में जमा हो गई हैं, ला तरतीब फीही, उनमें कोई तरतीब नहीं है। कल मुजतमिअ फिल मकानी, जैसे वो लोग जो जमा हो जाए फिल मकानी किसी जगह में, जैसे उनमें कोई तरतीब नहीं होती, किसी को आप पहला या दूसरा वगैरह नहीं कह सकते भाई, तो इन तलाकों में भी कोई तरतीब नहीं है। वल कलाम उल तरतीब, और ये कलाम तो तरतीब का फायदा दे रहा है। उला का क्या माना, पहली, वुस्ता का क्या माना? दरमियान वाली। अखीरा का क्या माना? आखिर वाली। तो यह कलाम तरतीब का फायदा देने के लिए होता है, और तरतीब का जब यह फायदा नहीं दे रहा तो फिर मुफरद होना उसकी बुनियाद इसी तरतीब पर थी। मुफरद होने की बुनियाद किस पर है भाई? देखो ऊला का क्या माना? पहले। ऊला का क्या माना? पहला ना, ये तलाक है तो पहली तलाक, तो ऊला का माना हुआ पहली तलाक, और पहली तलाक तो कोई भी नहीं, तो मालूम हुआ ये ऊला का लफ्ज तरतीब का फायदा नहीं दे रहा। और इसी तरतीब पर मबनी था मुफरद होना भी। मुफरद क्यों है? ये पहला है, ये एक है, ये वुस्ता है, दरमियान वाला है, मालूम हुआ ये भी एक है। अखीरा, ये आखिर वाला है, ये भी एक है। तो ये कलाम असल में किस लिए है? तरतीब के लिए है। यूं कहो असल में ये कलाम तरतीब के लिए है, और इफराद जिमनन मालूम हो रही है। इफराद वाहिद होना जिमनन मालूम हो रही है। मसलन औरत ने कहा इख्तरतुल ऊला, तो ये ऊला तरतीब के लिए है असल में, तो असल ये तरतीब का फायदा देगा, और जिमनन मुफरद होना भी मालूम हो जाएगा कि एक है। लेकिन जब ये तरतीब का फायदा नहीं देगा तो तरतीब के ऊपर ही तो बुनियाद थी मुफरद होने की, तो मुफरद होने का भी फायदा नहीं देगा। जब तरतीब का फायदा नहीं, यानी जब असल का फायदा नहीं, तो जिस असल पर जिस चीज की बुनियाद थी यानी मुफरद होना, उसका भी फायदा नहीं होगा। तो ये ऊला वुस्ता अखीरा ये सिफत बिल्कुल लग्व होगी, इसका एतबार ही नहीं। गोया औरत ने सिर्फ इख्तरतू कहा है, और इख्तरतू तो खावन ने तो उसको तीन तलाकों का मालिक बनाया था, लिहाजा तीनों तलाकों को उसने इख्तियार कर लिया और तीनों वाके हो गए। इमाम साहब की दलील समझ में आ गई? तो वह लहू, इमाम साहिब की दलील यह है कि अन्नहादा वस्फुन लगवुन, की यह वस्फ लगव है। ले अन्नल मुजतमिया फिल मिल्की ला तरतीब फी ही, इसलिए क्योंकि वो तलाकें जो मिल्कियत के अंदर जमा हैं उनमें कोई तरतीब नहीं है। कल मुजतमिया फिल मकानी, जैसे कि वो लोग जो जमा हो एक जगह के अंदर उनमें कोई तरतीब नहीं होती। वल कलाम उलित तरतीब, और यह कलाम तो असल में किस लिए है? तरतीब के लिए है। वल इफराद मिन जरूराती ही, और मुफरद होना इसकी जरूरत में से है। पहला होगा तो मालूम हुआ मुफरद होगा, दरमियान वाला होगा मालूम हुआ मुफरद होगा, आखिर वाला होगा मालूम हुआ मुफरद होगा। तो असल ये कलाम तरतीब के लिए है, और मुफरद होना इसके साथ जरूरी है भाई। लेकिन जब तरतीब का फायदा नहीं, तो जब असल का फायदा नहीं, तो जिस चीज की बुनियाद इस तरतीब पर थी यानी मुफरद होना, उसका भी फायदा नहीं होगा। तो कहते हैं वल कलाम उलित तरतीबी, और ये कलाम तरतीब के लिए है। वल इफराद मिन जरूराती ही, और मुफरद होना इसकी जरूरत में से है। फइदा लगा फी हक्किल असली, तो जब ये कलाम असल के हक में लगव हो गया, तो लगा फी हक्किल बिनाई, तो ये मबनी होने के हक में भी लगव हो गया। बिना का माना बुनियाद रखना, तो बुनियाद रखने के हक में भी लग्व हो गया। जब ये असल यानी तरतीब का फायदा नहीं दे रहा, तो इस तरतीब पर जिस चीज की बुनियाद थी यानी मुफरद होना, उसका भी फायदा नहीं देगा। ये माना है फइदा लगा फी हक्किल असली, जब ये कलाम लग्व हो गया असल यानी तरतीब के हक में, लगा फी हक्किल बिनाई, तो वो जिसकी बुनियाद रखी गई थी उसके हक में भी लग्व हो गया यानी मुफरद होने के हक में भी। आगे देखिए वलौ कालत इख्तर तुख्तियारतन फहिया सलासुन फी कौलिहिम जमीआ। अच्छा भाई खामन ने क्या कहा? इख्तारी इख्तारी इख्तारी, तीन दफा कहा। औरत ने कहा इख्तर तुख्तियारतन, तो कहते हैं सूरत में बिल इतफाक तीनों तलाकें हो जाएंगी। अब साहिबैन भी फरमाते हैं तीन तलाकें हो जाएंगी भाई। क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि इख्तियारतन मस्तर लाई, और इख्तियारतन मस्तर का क्या माना? इसके साथ गोलता जुड़ी हुई है, इसका माना एक मर्तबा इख्तियार करना। तो खामन ने इसको तीन तलाकों का मालिक बनाया है, और औरत के कहने का मतलब है इख्तर तो इख्तियारतन, कि मैंने एक मर्तबा इसको इख्तियार कर लिया जी। और जब एक मर्तबा इख्तियार किया तो खामन ने तो तीन का मालिक बनाया था, तो इसने एक ही मर्तबा में तीनों को इख्तियार कर लिया। वलौ कालत इख्तर तुख्तियारतन, और अगर औरत ने इख्तर तुख्तियारतन कहा, फहिया सलासुन फी कौलिहिम जमीआ, तो ये तीन तलाकें होंगी हमारे तीनों अइमा के कौल में। लिअन्नहा लिलमर्रती, इसलिए क्योंकि ये एक मर्तबा के लिए आता है। ये गोलता किस लिए आती है? एक मर्तबा के लिए। फसारत कमा इदा सर्रहत बिहा, तो ये इसी तरह हो गया जैसे औरत ने मर्रा की तसरीह कर दी है। ये इख्तियारतन किस लिए आता है, ये गोलता किस लिए आती है, मर्रतन के लिए। तो गोया औरत ने मर्रतन की तसरीह कर दी और यूं कहा इख्तर तुम मर्रतन, मैंने एक मर्तबा इख्तियार कर लिया, तो जिस चीज का मालिक बनाया था वो सारी वाकई हो जाएंगी भाई। तो कहते हैं लिअन नहालिल मर्रती, इसलिए क्योंकि ये वहदत वली ता जो है ये एक मर्तबा के लिए होती है। फसारत कमा इदा सर रहत बिहा, तो ये इसी तरह हो गया जैसे औरत ने मर्रतुन की तसरीह कर दी हो। वली अन इख्तियारत अली ता की दूसरी दलील, कहते हैं इसलिए क्योंकि कि भाई ये जो मस्तर है माकबल कलाम की ताकीद के लिए आता है। तो अगर औरत सिर्फ इख्तरतु कहती तो उस सूरत में भी बिल इत्तेफाक तीन तलाकों ने होना था। तो अगर इख्तरतु इख्तियारतन मस्तर के साथ उसमें ताकीद भी पैदा कर दें तो जब बगैर ताकीद के तीन तलाकें होंगी तो ताकीद के साथ बतरीके औला तीन तलाकें होंगी। तो कहते हैं वली अन इख्तियारत अली ताकीदी, और इसलिए क्योंकि इख्तियारा का मस्तर जो है वो ताकीद के लिए है। वह बिदूनी ताकीदी यकाउ सलासु, और बगैर ताकीद के तीन तलाकें वाक हो जाती हैं। फमात ताकीदी औला, तो ताकीद के साथ बतरीके औला तीन तलाकें होंगी। वलव कालत कत्तल्लक तु नफसी अव इख्तर तु नफसी भी तत्ली कतिन फही अवाहिदतुम लिकुर्रा जाता। सूरत मसला यह, खावन ने बीवी से कहा इख्तारी, और आपने पढ़ा है औरत अगर कहेगी इख्तर तो नफसी तो एक तलाके बाइन हो जाएगी, तलाके बाइन, खावंद रुजू नहीं कर सकता। लेकिन तो उसके जवाब में औरत दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करती है, सरीह अल्फाज, और सरीह से तो तलाके रजई होती है। तो क्या यहां तलाके रजई होगी या नहीं, अब वो बयान कर रहे हैं। कहते हैं वलव कालत, और अगर औरत ने कहा कद तल्लक तो नफसी, तहकीक मैंने अपनी जात को तलाक दे दी, खावंद ने तो कहा था इख्तारी और औरत ने क्या कहा कद तल्लक तो नफसी, यानी सरीह लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। औ इख्तर तो नफसी बी ततली कतिन, या औरत कहती है मैंने अपनी जात को इख्तियार कर लिया बी ततली कतिन एक तलाक के साथ, तो अब उसने तलाक का सरीह लफ्ज जिक्र कर दिया। फहिया वाहिदतुन यम लिकुर रजाता, तो अब एक ही तलाक होगी, यम लिकुर रजाता, और खावंद रुजू का मालिक होगा। बात समझ में आ गई, क्यों, कहते हैं लिअन हाद लफ्ज यूजिबुल इंतिलाका, इंतिलाक का माना है जुदाई, इंतिलाक का क्या माना जुदाई। लिअन हाद लफ्ज यूजिबुल इंतिलाका बादन क़िज़ा इल इद्दती, इसलिए क्योंकि ये वाला जो लफ्ज है ये जो कद तल्लक्तु नफ्सी कहा या इख्तर तो नफसी भी ततलीकतिन कहा, तवज्जो है, ये जो लफ्ज है यूजिबुल इंतिलाका ये जुदाई को साबित करता है बादन क़िज़ा इल इद्दती, इद्दत के गुजर जाने के बाद। भाई सरीह तलाक में जुदाई कब आती है, सरीह तलाक में इद्दत के गुजरने के बाद बैनूनत और जुदाई आती है, उससे पहले खावंद रुजू कर सकता है। तो यहां पर भी औरत ने सरीह लफ्ज इस्तेमाल किया है, यह तकाजा करता है कि जुदाई कब आएगी, इद्दत के बाद आएगी, लिहाजा खावंद रुजू कर सकता है। तो कहते हैं लिअन हादा लफ्ज यूजिबुल इंतिलाक बादन क़िज़ा इल इद्दती, इसलिए क्योंकि ये जो सरीह लफ्ज है ये जुदाई को साबित करता है बादन क़िज़ा इल इद्दती, इद्दत के गुजर जाने के बाद। फकअन्नह इख्तारत नफ्सहा बादल इद्दती, तो गोया औरत ने अपनी जात को इख्तियार किया है बादल इद्दती, किसके बाद, इद्दत के बाद, फिलहाल उसने अपने आप को इख्तियार नहीं किया, तो अभी तलाके बाइन नहीं हुई, तलाके रजई हुई है। यहां तक बात समझ में आ गई, याद रखो ये जो मसला आया शारहीन यहां एतराज करते हैं, वजह यह कि इस मसले के अंदर क्या आया कि खावंद रुजू कर सकता है, खावंद ने क्या कहा था इख्तारी, तो अपने आप को इख्तियार कर ले, और औरत ने जवाब में क्या कहा कद तल्लक्तु नफसी या इख्तरतु नफसी भी तत्लीकतिन, और मतन में बताया कि इस सूरत में खावंद रुजू कर सकता है, लेकिन और उलमा फुकाहा फरमाते हैं कि नहीं, इस मसले में खावंद रुजू नहीं कर सकता। वजह यह कि एतबार उस तलाक का है जो खावंद ने सुपुर्द की है, औरत ने जो तलाक वाकई की है उसका एतबार नहीं, और इख्तारी के जरिए खावंद तलाक बाइन सुपुर्द करता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि औरत अपनी जात को इख्तियार करती है कि यानी मेरी जात मेरे साथ खास है, मेरे खावंद का अब इसमें कोई हक नहीं है, तो इसके जरिए तलाक बाइन आती है। तो लिहाजा यहां खावन ने औरत को तलाक बाइन हवाले की है, तो जो औरत वाके करेगी वो भी तलाक बाइन ही होगी, वो तलाक रजई को वाके कर ही नहीं सकती, क्योंकि तलाक रजई का तो मालिक उसको खावन ने बनाया ही नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। लेकिन यहां तो आया मतन में आया फहिया वाहिदतु यमलिकुर रजअता। तो याद रखो शारहीन फरमाते हैं कि ये जो मतन है ये जामे सगीर का मतन है। आप जानते हैं कि हिदाया का मतन जामे सगीर या कुदूरी से अखज किया है साहिब हिदाया ने, तो ये जामे सगीर की इबारत है और जामे सगीर में यह इबारत इसी तरह है फहिया वाहिदतु यमलिकुर रजअता। लेकिन जामे कबीर के अंदर यहां ला मौजूद है, यहां ऐ ला यमलिकुर रजअता, खावंद रुजू का मालिक नहीं है। बात समझ में आ गई। मालूम हुआ जामे सगीर के अंदर लिखते हुए ये लफ्ज यहां रह गया, वरना असल में क्या है ला यमलिकुर रजअता। तो जामे सगीर से ये मतन लिया साहिब हिदाया ने और जामे सगीर के अंदर ला नहीं था, उसी बारे से क्या पता चल रहा था खामंद रुजू कर सकता है, इसलिए साहिब हिदाया ने दलील भी यही जिक्र की कि रुजू कर सकता है खावन। हालांकि यहां यहां असल मसला क्या है, शारहीन क्या फरमाते हैं कि यहां रुजू नहीं कर सकता क्योंकि एतबार किसका है, जिस तलाक का खावंद ने मालिक बनाया है, खावंद के मालिक बनाने का एतबार है, खावंद ने जिस तलाक का मालिक बनाया है वो मोतबर है, औरत जो तलाक वाके करती है वो मोतबर नहीं है, और खावंद ने तो बाइन का मालिक बनाया था तो वाके भी कौन सी होगी, बाइन ही होगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई वह इन काला लहा अमरू की भी यदि किफी ततली कतिन औ इख्तारी ततली कतन फख्तारत नफसहा फहिया वाहिदतु यमलिकुर रजअता। अच्छा, अगर खावंद ने बीबी से यूं कहा अमरू की भी यदि की फी ततली कतिन, अगर खावन सिर्फ इतना कहता अमरू की भी यदि की, तेरा मामला तेरे हाथ में है, तो फिर सूरत में तलाक बाइन का इख्तियार होता, लेकिन खावन फी ततली कतिन कह रहा है तो और सरीह लफ्ज़ जिक्र कर रहा है, लिहाजा जब एक सरीह तलाक का इख्तियार दे रहा है मालूम कौन सी तलाक वाके होगी, रजई वाके होगी। तो कहते हैं वह इन काल अलहा, और अगर खामन ने बीवी से कहा अमरू की बीय दिखी फी ततली कतिन के तेरा मामला तेरे हाथ में है एक तलाक के अंदर, अब इख्तारी ततली कतन, या खामन ने कहा इख्तारी ततली कतन तू एक तलाक को इख्तियार कर ले, तो ततलीका यानी सरीह लफ्ज जिक्र कर दिया, फख्तारत नफसहा औरत ने अपनी जात को इख्तियार कर लिया, फही अवाहिदतु यमलिकुर रजअता, तो ये एक तलाक होगी और खावन रुजो का मालिक होगा, लिअन्नहु जअला लहा लिख्तियार, इसे क्योंकि खावन ने इख्तियार उसको दे दिया, लेकिन बितत्लीकतिन, लेकिन किस चीज का, एक तलाक का, वही मुआक्किबतुन लिर्रजअती, और तलाक जो है वो तो अपने पीछे रुजो को लाती है, लिहाजा वो रुजो कर सकता है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस, बिहादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।